अच्छा भाई आगे सबक देखिए। अल मफ़ऊलुल मुतलक़ सुम्मिया बिही लिसिहति इतलाक़ सीगतिल मफ़ऊल अलैहि मिन गैरि तक़यीदिही बिल बाई औ फी औ मा अविल लाम बिखिलाफिल मफ़ाइलिल अरबअतिल बाक़िया فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحدة منها فيقال المفعول به أو فيه أو معه أو له। भाई गुज़श्ता सबक में हमने मंसूबात के बारे में पढ़ना शुरू किया था भाई, और साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि मंसूब वो है जो मफ़ऊल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो भाई, और मफ़ऊल होना आम है, चाहे हकीकतन मफ़ऊल हो और चाहे हुक्मन मफ़ऊल हो। हकीकतन मफ़ऊल हो जैसे मफ़ाइल खमसा हैं भाई, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू और मफ़ऊल फी भाई, और हुक्मन जो हैं जैसे कि तमीज है, हाल है, मुस्तस्ना है। नीज इसी तरह काना की जो खबर है वो भी मंसूब होती है, इन्ना का इसम मंसूब होता है, लाय नफी जिन्स का इसम मंसूब होता है, मौला मुशब्बहतैनी बिलैसा की जो खबर है वो मंसूब होती है। इसी तरह अफ़ाल मुकारबा की खबर ये मंसूबात में से हैं। अब हालांकि ये सब तो उम्दा हैं भाई, और मफ़ऊल जो है वो तो फजला होता है, वो फजला होता है, और ये चीजें जो जिक्र हुई काना की खबर है, इन्ना और लाय नफी जिन्स का इसम वगैरह, ये तो कलाम के अंदर उम्दा वाक़े होते हैं, यानी मुस्नद या मुस्नद इलै, तो ये भी हुक्मन मफ़ऊल हैं, इन पर नसब आ रहा है क्योंकि इनकी मुशाबहत है मफ़ऊल के साथ, तो इसलिए इनको नसब दिया गया भाई। और फिर इन्होंने आपको ये भी बतलाया कि मफ़ऊल होने की अलामतें चार हैं भाई, फतहा है, कसरा है, अलिफ है और या है भाई। जैसे रअईतु ज़ैदन व मुस्लिमातिन व अबाका व मुस्लिमैनी व मुस्लिमीना। रअईतु ज़ैदन, ये ज़ैदन पर जो फतहा आया ये नसब की अलामत है। इसी तरह रअईतु मुस्लिमातिन, ये मुस्लिमातिन जो है इसका नसब कसरा के साथ आता है, तो ये जो कसरा है ये भी नसब की यानी मफ़ऊल होने की अलामत है। इसी तरह अबा का अस्माए सिता मुकब्बरा मुअहदा मुजाफा इला गैरी या इल्मुतकल्लिम, इसके साथ अलिफ आया और ये अलिफ भी मफ़ऊल होने की अलामत है। इसी तरह मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना तस्निया और जमा जो है इनके अंदर नसब जो है वो या के साथ आता है, तो ये या भी मफ़ऊल होने की अलामत है। उसके बाद साहिब काफिया ने मंसूबात का बयान शुरू करते हुए फरमाया था फमीन हुल मफ़ऊलुल मुतलकु। साहिब जामी ने आपको बतलाया कि ये मिनहू की हा जमीर चाहें तो मंसूब को राजे कर दें और चाहें तो मश्तमला अला आलमिल मफ़ऊलियत को राजे कर दें। मंसूब जो है मुअर्रफ है जिसकी तारीफ की गई, और हुआ मश्तमला अला आलमिल मफ़ऊलियति, ये उसकी तारीफ है। तो आप चाहें मिनहू की हा जमीर मुअर्रफ यानी मंसूब को राजे कर दें, और आप चाहें तो इसको इस जमीर को तारीफ यानी मश्तमला अला आलमिल मफ़ऊलियत को राजे कर दें। और फिर उसके बाद हमने मफ़ऊल मुतलक की तारीफ पढ़ी थी भाई। साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि वह हुस्मु मा फ़अलहु फ़ाइलु फ़िअलिन मज़कूरिन बिमानाहु, कि मफ़ऊल मुतलक वो नाम है उस हदस का। मैंने बतलाया था कि हदस वो माना है जो गैर की सिफत होता है जिसका अपना अलग कोई वजूद नहीं, और ये इसी मस्दर को कहते हैं। तो मस्दर का अपना अलग कोई वजूद नहीं होता, ये किसी की सिफत बनता है। वो गैर है तो इसका वजूद है, वो गैर नहीं तो इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं। जैसे ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने ज़र्ब लगाई, ज़ैद है तो ज़ैद की ये ज़र्ब भी है, ज़ैद नहीं तो ज़ैद की इस ज़र्ब का भी कोई वजूद नहीं। तो कहते हैं मफ़ऊल मुतलक नाम है उस हदस का, या यूं कहें उस मस्दर का जिसको किसी फेल के फाइल ने किया हो। जब यह कहा किसी फेल के फाइल ने उस हदस को किया हो, उस मस्तर को किया हो, तो इसके अंदर सारे मसादिर दाखिल हो गए, क्योंकि हर मस्तर को कोई ना कोई करने वाला है। मस्तर तो गैर की सिफत होती है, इसका तो अपना अलग कोई वजूद होता ही नहीं, तो इसमें तमाम मसादिर दाखिल हो गए। लेकिन जब आगे मजकूरिन की कैद आ गई, जिसको फेले मजकूर के फाइल ने किया हो, तो अब वो तमाम मसादिर निकल गए जिनका फेल मजकूर ना हो। तो जाराबा जैदुन जरबन, अब ये जरबन इसके अंदर दाखिल है, इसलिए क्योंकि इसको फेले मजकूर के फाइल ने किया है। फेले मजकूर क्या है? जाराबा, और उसका फाइल कौन है? जैद। जाराबा जैदुन जरबन, ये जरबन ये मफूल मुतलक है, इसलिए क्योंकि इसको फेल मजकूर के फाइल यानी जैद ने किया है। जाराबा जैदुन क्या माना? जैद ने जरब लगाई है, तो जैद का फेल क्या है? जरब है, तो इस फेल को किसने किया है? जैद ने। तो जराबा जैदुन जरबन, ये जरबन मफूले मुतलक है, यानी ये वो मस्तर है जिसको फेले मजकूर के फाइल ने किया है। और फिर आगे एक और कैद बढ़ा दी थी, बिमाना हो, और ये सिफत सानी है इस फेल के लिए, वो फेल जो मजकूर है और उस इसम का हम माना है, उस मस्तर का हम माना है। देखो जराबा जैदुन जरबन, ये जरबन क्या है? ये मफूल मुतलक है, और ये जो माकबल का फेल है, देखो ये इसी के हम माना है, इसी का हम माना है। यहां वो हदस भी कौन सा जिक्र है? जरब जिक्र है, और माकबल में फेल भी क्या है? वही जरब वाला फेल जिक्र हो रहा है। तो ये भी माना हो सिफत है किसकी? फेल की। तो वो फेल जो है इस मस्तर के हम माना हो भाई। और ये कैद इसलिए लगाई क्योंकि मफूल लहू को वो निकालना चाहते हैं तारीफ से। जाराबा जैदुन तादीबन, जैद ने पिटाई की अदब सिखाने के लिए। देखो अब इसके अंदर जैद का फेल जर्ब भी है, और इसी तरह ये जो तादीब है, अदब सिखाना, ये भी जैद ही का फेल है, ये भी जैद ही का फेल है। तो तादीबन जो है ये मफूल लहू है जो माकबल फेल की इल्लत बयान कर रहा है, और इसको करने वाला भी वही फाइल है। ये जर्ब किसने लगाई? जैद ने। और ये अदब किसने सिखाया? जैद ने। और ये अदब सिखाना कोई अलग चीज नहीं है, वही जर्ब बाई एतबार के उससे दूसरे को तकलीफ हो रही है, इसको जर्ब कहते हैं, इसी फेल को जर्ब कहते हैं। और इस और बाई एतबार के इसी जर्ब से उसकी इसलाह हो रही है, और वो अदब सीखता जा रहा है, इसी जर्ब को क्या कहेंगे? तादीब कहेंगे। तो जर्ब का फेल भी किसने किया? फेल मजकूर के फाइल ने, यानी जाराबा जैदुन, ये जैद ने किया। और ये तादीब भी किसका फेल है? फेल मजकूर के फाइल का फेल है। तो जब कहा कि मफूल मुतलक वो उस हदस का नाम है जिसको फेल मजकूर के फाइल ने किया हो, तो इसके अंदर जराबा जैदुन जरबन, ये जरब भी दाखिल हुआ क्योंकि इसको भी फेले मजकूर के फाइल ने किया है, और जराबा जैदुन तादीबन, तादीबन भी दाखिल हुआ क्योंकि इसको भी फेले मजकूर के फाइल यानी जैद ने किया है। तो अब इस मफूल लहू को तारीफ से निकालना चाहते हैं क्योंकि मफूल मुतलक की तारीफ कर रहे हैं, तो बिमाना हो की कैद लगा दी कि वो फेल जो है उस मसदर के माना में हो। अब देखो जराबा जैदुन जरबन, यह जराबा किस माना में है? आगे आने वाले मसदर जरब के माना में है, तो ये तो इसके अंदर दाखिल रहा। और जराबा जैदुन तादीबन, ये जराबा क्या तादीब के माना में है? क्या जराबा का माना अदब सिखाना है? नहीं भाई, तो ये जो फेल है ये इस मस्तर तादीबन के माना में नहीं, तो लिहाजा मफूल लहू इस तारीफ से खारिज हो गया। क्या बात हुई कि ये बिमानाहू की कैद किस लिए लगाई? मफूल लहू को खारिज करने के लिए, क्योंकि मफूल मुतलक भी फेल मस्कूर के फाइल का फेल होता है, और मफूल लहू भी फेल मस्कूर के फाइल का फेल होता है। लेकिन जब कैद लगा दी कि वो फेल इसका हम माना हो, तो अब तादीबन निकल गया क्योंकि माकबल में जो जराबा फेल जिक्र हुआ वो तो इसका हम माना नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मफूल मुतलक के लिए क्या जरूरी है? कि फेल मजकूर उसी के माना में हो, उसका कोई अलग माना ना हो भाई। अब आइए आज के सबक पर भाई। कहते हैं अल मफूल उल मुतलक सुम्मिय बिही लिसिहत इतलाक सीगत अल मफूल अलैहि मिन गैर तक़यीदिही बिल बाई औ फी औ मा अबिल लाम। भाई मफूल मुतलक, اب اس کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں بھائی؟ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں بھائی؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو جتنے مفعول ذکر ہیں یعنی مفاعل خمسہ، ان میں سے حقیقت میں صرف یہ مفعول مطلق جو ہے یہ مفعول ہے، باقی مفعول نہیں. جتنے مفعول ہیں مفاعل خمسہ ان میں سے صرف یہ مفعول مطلق یہ مفعول ہے، باقی مفعول نہیں ہے. یعنی مفعول کا معنی دیکھیں، مفعول کا کیا معنی؟ مفعول کیا ہوا، فعل کا معنی فعل کرنا، فاعل کا معنی فعل کرنے والا، اور مفعول وہ جس کو کیا گیا ہے. مفعول معنی پہ غور کر رہے ہو، مفعول کا کیا معنی؟ جس کو کیا گیا ہے. تو یہ جو مفعول مطلق ہے حقیقت میں یہی مفعول ہے، باقی مفعول نہیں ہے. یعنی صرف اس پر صیغہ مفعول کا اطلاق اس پر صرف صحیح ہے بغیر تقیید کے، جبکہ باقی جو مفاعل ہیں ان پر بہی یا لہو یا فی یا معہ وغیرہ کی قید لگانا پڑے گی، اس کے بغیر ان پر مفعول کا اطلاق صحیح نہیں، جبکہ اس پر بغیر کسی قید کے مفعول کا اطلاق صحیح ہے. ضرب زید ضربا، زید نے کیا فعل کیا؟ ضرب والا کیا. تو ضرب وہ فعل ہے جو کیا گیا ہے، جو یعنی ضرب وہ چیز ہے جس کو زید نے کیا ہے، جس کو زید نے وجود دیا ہے. تو یہ مفعول مطلق، یہ اس چیز کا نام ہے جس کو فعل کا فاعل کرتا ہے، یعنی اس کو وجود دیتا ہے. ضرب زیدن، زید نے جب ضرب لگائی تو کس چیز کو وجود دیا؟ ضرب کو وجود دیا. تو زید کا مفعول کیا، زید کا کیا ہوا کیا ہے؟ ضرب ہے. توجہ ہے، زید نے کیا کیا اور کس چیز کو وجود دیا؟ ضرب کو. تو ضرب جو ہے یہ زید کا مفعول ہے، یہ زید کا کیا ہوا کام ہے. جبکہ ضرب زیدن عمرن، زید نے عمر کی پٹائی کی، کیا زید نے عمر کو وجود دیا ہے؟ تو وجود صرف یہ جو مصدر ہے اس کو، وہ جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کو وجود دیتا ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے صرف یہ ہے اس کا مفعول، یہ ہے اس کا کیا ہوا، باقیوں پر مفعول کا اطلاق صحیح نہیں بغیر قید کے. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو مفعول مطلق جو ہے اس کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صیغہ مفعول کا اطلاق صرف اسی پر صحیح ہے. یہی وہ چیز ہے، توجہ سے سنو، یہی وہ چیز ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے اور اس کو وجود دیا ہے، باقی جتنے مفاعل ہیں ان کو اس نے وجود نہیں دیا بھائی، صرف اس کو وجود دیا ہے. جس نے ضربہ کیا اس نے ضرب کو وجود دیا، جس نے شربہ کیا اس نے شرب کو وجود دیا، جس نے اکلا کیا اس نے عقل کو وجود دیا. تو یہی وہ چیز ہے جو عربی زبان کے اعتبار سے جس کو مفعول کہیں، یعنی کیا ہوا، فاعل نے یہ کیا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ، تو یہ کیا ہے یعنی اس کو وجود دیا ہے، جبکہ مفعول بھی ہی، اس پر تو فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، فاعل اس کو کوئی وجود نہیں دیتا. مفعول معہ وہ تو فاعل کے ساتھ فعل میں شریک ہوتا ہے، فاعل اس کو کوئی وجود نہیں دیتا. مفعول فی، مفعول فی تو وہ زمانہ ہے جس کے اندر فاعل نے فعل کیا ہے، فاعل نے کوئی اس مفعول فی کو وجود نہیں دیا. ہاں مفعول لہو رہ گیا، مفعول لہو وہ ہے جس کو فاعل وجود دیتا ہے. ضرب زیدن تادیبن، یہ تادیب والا فعل بھی کس نے کیا ہے؟ زید نے کیا ہے، زید نے کیا ہے، لہذا یہ بھی زید کا مفعول ہے. زید کا ضرب زیدن تادیبن، زید نے ضرب لگائی ادب سکھانے کے لیے، تو یہ ضرب بھی کس کا فعل؟ زید کا. اور یہ ادب سکھانا بھی کس کا فعل؟ زید کا. تو یہ مفعول لہو یہ بھی فعل مذکور کے فاعل کا کیا ہوا کام ہے، یعنی اس کا مفعول ہے، اس کا مفعول ہے. معلوم ہوا زید کا کام ضرب بھی ہے، زید کا مفعول ضرب بھی ہے، اور زید کا مفعول تادیب بھی ہے، تادیب بھی ہے. لیکن پھر یہ مفعول مطلق اور مفعول لہو میں فرق یہ ہے کہ زید کو اس ضرب کی وجہ سے فاعل کہا جا رہا ہے یا تادیب کی وجہ سے فاعل کہا جا رہا ہے. ضرب کی وجہ سے، ضربہ زیدن، یہ جو ضرب کا فعل ہے اس کے لیے زید فاعل ہے. تو زید کو جو فاعل کہا جا رہا ہے وہ ضرب کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، تادیب کے اعتبار سے فاعل نہیں کہا جا رہا بھائی. तो जैद का फाइल होना इस जर्ब की वजह से है, तादीब की वजह से नहीं। क्या बात हुई? बात यह चल रही थी कि मफूल मुतलक को यह नाम क्यों दिया गया, तो उसकी वजह साहिब जामी बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि यह जो मफूल मुतलक है सिर्फ इसी पर मफूल का लफ्ज बगैर किसी कैद के बोलना सही है, बाकियों पर बिही या फीही या लहू माहू की कैद के बगैर मफूल का लफ्ज बोलना सही नहीं। क्यों नहीं सही बाकियों पर, और इस पर क्यों सही है? मैंने वजह बता दी, क्योंकि हकीकत में फेले मस्कूर के फाइल ने यही फेल किया है। जराबा जैदुन जरबन, फेले मस्कूर क्या? जराबा, और फाइल क्या? जैद। ये जो फेले मस्कूर का फाइल जैद है, इसने हकीकत में क्या किया है? जरब लगाई है, जरब को वजूद दिया है, तो ये जरब जो है जैद का मफूल है, यानी जैद का किया हुआ काम है, तो लिहाजा हकीकत में यही मफूल है, हकीकत में यही मफूल है। जबकि मफूल भी ही वो फेले मस्कूर के फाइल का किया हुआ नहीं है, यानी उसने उसको वजूद नहीं दिया। इसी तरह मफूल फी और मफूल माहू, वो भी फेले मस्कूर के फाइल का किया हुआ यानी उसका वजूद दिया हुआ वो नहीं है, भाई फाइल ने उनको वजूद नहीं दिया। हां सिर्फ मफूल लहू रह गया था, उसको तो फेले मस्कूर के फाइल ने वजूद दिया है, लेकिन वो भी निकल जाता है इसलिए क्योंकि क्या कहा? फेले मस्कूर के फाइल ने जिसको, तो फाइल का फाइल होना वो इस तादीब की वजह से नहीं है बल्कि जर्ब की वजह से है उसका फाइल होना। जराबा जैदुन जरबन, ये जैद फाइल है किसकी वजह से? इस जर्ब की वजह से। अगर ये जर्ब ना होती तो जैद फाइल भी ना होता भाई, तो फेले मस्कूर के फाइल का फाइल होना इस जर्ब की वजह से है, किसी और चीज की वजह से नहीं है भाई। तो लिहाजा इस फाइल का हकीकत में फेल क्या है? जर्ब ही है, तादीब नहीं। तादीब की वजह से, तादीब उसका फेल तो है लेकिन यह फाइल तादीब की वजह से फाइल नहीं कहला रहा बल्कि जर्ब की वजह से। तो हकीकत में इसका फेल क्या है? जर्ब ही है भाई। अब बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अल मफूलुल मुतलक, मफूल मुतलक जो है सुम्मिय बिही, इसको इस नाम के साथ मौसूम किया गया, यानी इसका यह नाम मफूल मुतलक रखा गया। लिसिहति इतलाक सीगतिल मफूल अलैहि मिन गैरि तक़यीदिहि बिल बाई औ फी औ मा अविल लामी, इसलिए क्योंकि इस पर मफूल के सीगे का इतलाक सही है बगैर इसको मुकय्यद किए बा या फी या मा या लाम के साथ, कि इस पर मफूल के सीगे का इतलाक सही है क्योंकि यह फेल के फाइल का किया हुआ है, यानी जिसको फेल के फाइल ने किया है और उसको वजूद दिया है, जबकि बाकी मफाइल ऐसे नहीं है उनको फेल मस्कूर के फाइल ने वजूद नहीं दिया भाई। बिखिलाफ इल मफाइल इल अरबातिल बाकियति, बखिलाफ बाकी के चार मफाइल, फइन्नहु ला यसिहु इतलाकु सीगतिल मफूल अलैहा, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर मफूल के सीगे का इतलाक सही नहीं है। इल्ला बाद तक़यीदिहा बिवाहिदतिम मिन्हा, मगर बाद इसके कि उनको मुकय्यद कर दिया जाए इनमें से किसी एक के साथ, यानी लहू या फीही या माहू या बिही के साथ मुकय्यद करने के बाद फिर उन पर मफूल के सीगे का इतलाक सही है। फयुकाल, उपस यूं कहा जाता है अल मफूल बिही औ फीही औ माहू औ लहू, यानी मफूल के साथ कोई कैद लगाई जाती है, कभी मफूल बिही कहते हैं, कभी मफूल फीही कहते हैं, कभी मफूल माहू कहते हैं और कभी मफूल लहू कहते हैं। तो बाकी के जो मफाइल हैं उनके साथ जब तक ये बिही फीही लहू और माहू की कोई कैद नहीं लगाएंगे उनके ऊपर मफूल का इतलाक सही नहीं, क्योंकि वो फाइल के मफूल नहीं, यानी फाइल ने उनको वजूद नहीं दिया, जबकि मफूल मुतलक उसको तो फेले मस्कूर के फाइल ने वजूद दिया है, तो उस पर बगैर किसी कैद के भी मफूल का लफ सही है। मफूल का क्या माना? किया हुआ, वजूद दिया हुआ, तो चूंकि उसको भी फेले मस्कूर के फाइल ने किया है और वजूद दिया है इसलिए उसको क्या कहते हैं? मफूल मुतलक कहते हैं। बात समझ में आ गई। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा, यहां तो कैद मौजूद है मफूलुन मुतलकुन, मुतलक की कैद मौजूद है यहां पर, तो मुतलक की कैद मौजूद है और आपने तो हमें क्या कहा कि बगैर किसी कैद के भी इसका इतलाक उस मफूल पर सही है। तो जवाब याद रखना कि भाई ये बाकियों से सिर्फ फर्क करने के लिए है, बाकियों में बिही लहू फीही माहू की कैद थी तो इसके अंदर चूंकि कोई कैद नहीं तो उसकी गोया सराहत भी कर दी कि मफूल मुतलक, मुतलक का क्या माना? जिसमें कोई कैद ना हो भाई। मुतलक का क्या माना? जिसमें कोई कैद ना हो, तो इसके साथ मुतलक का लफ्ज ये बताने के लिए, बाकियों से फर्क करने के लिए मुतलक का लफ्ज लगाते हैं कि इसके साथ बिही फी ही वगैरह में से कोई कैद मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं वह हुआ अइल मफूलुल मुतलक उस्मु मा फालहू फाइल फिलिन। अब यह तारीफ शुरू हो गई मफूल मुतलक की। वह हुआ अइल मफूलुल मुतलक, हुआ जमीर के बाद साहिब जामी ने अइल मफूलुल मुतलक का लफ्ज निकाला। वो दरअसल इस जमीर का मर्जे बतलाना चाहते हैं कि हुआ जमीर किसको राजे है, मफूल मुतलक को राजे है और यह उसकी तारीफ की जा रही है। आगे कहा इस्मु मा फालहू फाइल फिलिन, मफूल मुतलक वो नाम है उस हदस का। मैंने बताया कि मां से क्या मुराद है, हदस। हदस वो माना जो गैर की सिफत होता है, यानी ये जो मस्तर है, याद रखो मस्तर का अपना अलग कोई वजूद नहीं, ये एक माना का नाम है जो गैर की सिफत होता है, खारिज में इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं। तो मालूम हुआ मस्तर एक माना है भाई, क्या है, माना है जो किसी की सिफत होता है। जैसे जराबा जैदुन, जैद ने जर्ब लगाई तो ये जर्ब जैद की सिफत है, जर्ब मस्दर जैद की सिफत है क्योंकि उसने जराबा का फेल किया है। शरीबा अमरुन, अमर ने शरीबा का फेल किया है तो ये शुर्ब अब उसकी सिफत है। तो कहते हैं मफूल मुतलक वो नाम है उस हदस का जिसको किसी फेल के फाइल ने किया हो। वल मुरादु बिफ़िअलिल फाइल इयाहु क़ियामुहु बिही। यहां से एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि आपने हमें क्या बतलाया कि मफूल मुतलक उस हदस का नाम है जो फाइल ने किया हो। मफूल मुतलक उस हदस का नाम है जिसको किसी फेल के फाइल ने किया हो। मालूम हो फाइल ने उसको वजूद दिया हो, जैसे ज़रबा ज़ैदुन ज़रबन। देखो जैद ने जर्ब वाला फेल किया तो किस चीज को वजूद दिया, जर्ब को वजूद दिया। तवज्जो है, जराबा जैदुन, जैद ने किस चीज को वजूद दिया, जर्ब को। अगर जैद ना होता तो ये जैद की जर्ब का वजूद था नहीं, अगर जैद ना होता तो जैद की जर्ब का वजूद भी ना होता। इसी तरह शरीबा अमरुन, अमर ने पानी पिया तो देखो ये शुर्ब अमर की सिफत है, अमर है तो ये अमर का शुर्ब भी है, अमर ना होता तो अमर का शुर्ब भी ना होता। मालूम हुआ अमर ने इस शुर्ब को वजूद दिया है। इसी तरह जैद ने इस जर्ब को वजूद दिया है। तो आपने मफूल मुतलक की क्या तारीफ की कि मफूल मुतलक वो हदस है जिसको किसी फेल के फाइल ने किया हो, यानी फाइल ने उसको वजूद दिया हो। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कई मफूल मुतलक ऐसे हैं कि उनके फाइल ने उनको वजूद नहीं दिया, कई मफूल मुतलक ऐसे हैं कि उनके फाइल ने उनको वजूद नहीं दिया। जैसे माता जैदुन मौतन, माता जैदुन मौतन, जैद मर गया। अब ये माता जैदुन के बाद ये जो मौतन लफ्ज आ रहा है ये मफूले मुतलक है बिल इत्तिफाक, लेकिन ये मरने का फेल जैद ने नहीं किया, यानी ये मरने के फेल को जैद ने वजूद नहीं दिया बल्कि उसको मौत किसने दी है, अल्लाह ताला ने दी है। तो ये जो मौतन है ये आपकी तारीफ से निकल गया। आपने तो मफूले मुतलक की तारीफ क्या की, मफूल मुतलक उस हदस का नाम है जिसको किसी फेल के फाइल ने किया हो भाई, बल्कि मुख्तसर लफ्जों में यूं कहो कि मफूल मुतलक वो हदस है जिसको फाइल ने किया हो। मफूल मुतलक वो हदस है जिसको फाइल ने किया हो। और माता जैदुन मौतन, ये जैद फाइल है और ये मौतन आगे मफूल मुतलक आ रहा है, लेकिन ये जो माता का फेल है ये इस फाइल ने नहीं किया, तो लिहाजा इस मौतन को तो मफूल मुतलक नहीं कहना चाहिए। इसी तरह जसुमा जसामतन, जैसे जसुमल फीलु जसामतन, जसामत का माना है बड़े जिस्म वाला होना। जैसे देखो हाथी का जिस्म बड़ा है और बकरी का जिस्म छोटा है, तो हम कहेंगे जसुमल फीलु जसामतन, फील का माना हाथी, जसुमल फीलु जसामतन, हाथी बड़े जिस्म वाला है। अब यहां पर देखो ये जो जसामत का लफ्ज आखिर में आ रहा है ये मफूल मुतलक है, और मफूल मुतलक किसे कहते हैं, आपने हमें क्या बताया, वो हदस है जिसको फाइल ने किया हो, हालांकि ये फील ने तो बड़े होने का फेल नहीं किया। जसुमल फीलो, जसुमा का फाइल कौन, फील, लेकिन फील ने तो ये जिस्म के बड़े होने वाला फेल इसने तो नहीं किया, ये बड़ा जिस्म तो उसको अल्लाह ताला ने आता फरमाया है। तो यहां पर भी ये जसामतन मफूल मुतलक है लेकिन यह आपकी तारीफ में दाखिल नहीं। और इसी तरह शरूफा जैदुन शराफन, شرف کا معنی معزز ہونا، تو شرف زید ان شرفن، زید معزز ہوا، زید عزت والا ہے، زید معزز ہے. اب یہاں پر دیکھو یہ جو شرفن کا لفظ آ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے، لیکن اس فاعل یہ زید نے یہ شرف والا فعل نہیں کیا، یہ عزت اس کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے. اسی طرح فعل منفی کے بعد جو مفعول مطلق آئے گا وہ بھی اس سے نکل گیا، ما ضاربا زیدن ضربن، زید نے پٹائی نہیں کی. آگے دیکھو ضربن مفعول مطلق آ رہا ہے، تو زید فاعل ہے کس فعل کا؟ ما ضاربا کا. تو ما قبل میں گویا ضاربا کا فعل ذکر ہے، زید اس کا فاعل ہے، لیکن اس پر حرف نفی داخل ہے، تو کیا زید نے یہ ضرب والا فعل کیا ہے یا نہیں کیا؟ زید نے تو یہ ضرب والا فعل نہیں کیا. اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا، مفعول مطلق اس حدث کا نام ہے جس کو فاعل نے کیا ہو، حالانکہ اس کو تو فاعل نے نہیں کیا. لہذا ما ضاربا زید ضربن، یہ جو ضربن آیا اس کو مفعول مطلق نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ بالاتفاق یہ مفعول مطلق ہے. بھائی اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کے مفعول مطلق کی تعریف لی جائے تو بہت سے مفعول مطلق آپ کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں. تو صاحب جامعہ اب اس کا جواب دیں گے کہ بھائی فاعل کے اس فعل کو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل فاعل کی صفت ہو اور فاعل کی طرف اس کا اسناد صحیح ہو. فاعل کا فعل کو کرنا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فاعل اس کو وجود دے، جیسے ضربا زیدن ضربن، زید نے کیا کیا؟ ضرب کو وجود دیا. شربا عمرن شربن، عمر نے شرب کو وجود دیا. تو یہاں وجود دینا، یہاں فاعل کا فعل کو کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ فاعل اس فعل کو وجود دے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس فعل کا اس فاعل کے لیے صفت ہونا صحیح ہو اور اس فعل کا اس فاعل کی طرف اسناد صحیح ہو. مات زید موتن، دیکھو یہ موت کس پر آئی ہے؟ زید پر. تو یہ موت زید کی صفت ہے، تو اس موت کا زید کی صفت ہونا صحیح ہے اور نیز اس موت کا اسناد زید کی طرف صحیح ہے. مات زید، کیونکہ یہ موت کس پر آئی ہے؟ زید پر آئی ہے. تو فاعل کا فعل کو کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ فعل فاعل کی صفت ہو. وہ فاعل ہے تو وہ صفت بھی ہے، وہ فاعل نہیں تو وہ صفت بھی نہیں، اور نیز اس فاعل کی طرف اس کا اسناد صحیح ہونا چاہیے. جیسے مات زید موتن، تو یہ موت دیکھو زید کی صفت ہے، زید ہے تو یہ والی زید کی موت بھی ہے، زید نہ ہوتا تو یہ زید کی موت بھی نہ ہوتی بھائی، اور نیز اس ماتا کا اسناد زید کی طرف صحیح ہے. اسی طرح جسم الفیل جسامتن، یہ ہاتھی ہے تو یہ جسما کا فیل بھی ہے، ہاتھی نہ ہوتا تو یہ ہاتھی کے بڑے جسم والی صفت بھی نہ ہوتی بھائی، اور نیز جسما کا اسناد ہاتھی کی طرف صحیح ہے. اسی طرح شرفا زید شرفن، زید کا معزز ہونا، دیکھو یہ زید کی صفت ہے، زید ہے تو یہ زید کی شرافت بھی ہے، زید نہیں تو زید کی شرافت بھی نہیں، اور نیز شروفہ کا اسناد بھی زید کی طرف صحیح ہے. تو کیا معنی ہوا؟ فاعل کا فعل کو کرنے سے مراد کیا ہے؟ فاعل کا فعل کو کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فاعل اس کو وجود دے، اس کو اپنے اختیار سے کرے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ فعل اس فاعل کی صفت بن سکے اور فاعل کی طرف اس کا اسناد صحیح ہو، بس اتنا کافی ہے، اس کو اپنے اختیار سے کرنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور نیز وہ جو فعل منفی کا اعتراض ہوا تھا، ما ضاربا زید ضربن، اس کے اندر تو زید نے ضرب نہیں لگائی، اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس کو فاعل نے کیا ہو بھائی. تو یہاں تو زید نے ضرب والا فعل نہیں کیا، تو جواب گزر گیا کہ معنی یہ ہے کہ فاعل کی طرف اس فعل کا اسناد صحیح ہو، اور پھر چاہے وہ اسناد ایجابی ہو یا سلبی ہو، یعنی اس میں ایک چیز کا اثبات ہو یا ایک چیز کی نفی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں ول مراد بفعل الفاعل ایاہو، اور مراد جو ہے فاعل کے اس حدث کو کرنے سے. ایاہو ضمیر لوٹائیں ماں کی طرف، اور ماں سے کیا مراد تھا؟ حدث. اور تعریف انہوں نے کیا کی؟ ذرا تعریف پہ نظر رکھو. ہو اسم ما فعلہ فاعل فعل، وہ حدث جس کو کیا ہو فعل کے فاعل نے، وہ حدث جس کو کیا ہو فعل کے فاعل نے. فاعل کے حدث کو کرنے کا کیا معنی ہے؟ اب وہ بیان کرنے لگے. فاعل کے حدث کو کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ فاعل اس کو اپنے اختیار سے کرے اور اس کو وجود دے، جیسے ضربا زید ضربا، زید نے کیا کیا ہے؟ ज़र्ब को वजूद दिया है, बल्कि फाइल के हदस को करने से मुराद यह है कि वह हदस उसके साथ कायम हो सके, उसकी सिफत बन सके और उसका उस फाइल की तरफ इसनाद सही हो। भाई बात समझ में आ गए। तो कहते हैं वल मुरादु बिफ़िअलिल फ़ाइली इय्याहु, और मुराद जो है बिफ़िअलिल फ़ाइली फ़ाइल का करना इय्याहु उस हदस को। तवज्जो है भाई, तारीफ में क्या आया, मा फ़अलहु फ़ाइलु फ़िअलिन, जिसको फेल के फाइल ने किया हो, किया हो ये करने का क्या माना कि उसने किया हो। कहते हैं वल मुरादु बिफ़िअलिल फ़ाइली इय्याहु, और फाइल का उसको करने से मुराद जो है कियामुहू बिही, कि वो फेल उसके साथ कायम हो यानी उसकी सिफत हो, बिहैसु यसिहु इस्नादुहू इलैही, इस तौर पर कि उसकी तरफ उसका इस्नाद सही हो। यह जरूरी नहीं कि उसने उसको अपने इख्तियार से किया हो। भाई ला अन यकूना मुअस्सिरन फीही, इससे यह मुराद नहीं है कि वो जो फाइल है वो इस हदस के अंदर मुअस्सिर हो, मुजिदन इय्याहू उसको वजूद देने वाला हो, इससे यह मुराद नहीं, क्योंकि माता जैदुन में जैद ने कोई मौत को वजूद नहीं दिया। हां मौत जैद की सिफत है, उसके साथ कायम है और उसका इस्नाद जैद की तरफ सही है। फला यरिदु अलैही, लिहाजा इस तारीफ पर यह एतराज वारिद नहीं होता। मिसलु मा तमौतं व जसुम जसामतं व शरुफ शरफन, तो इस तारीफ पर मा तमौतन जसुम जसामतन और शरुफ शरफन जैसा एतराज वारिद नहीं होता। व इन्नमा जीद लफ्जुल इस्म लिअन्नमा फअलहुल फाइलु, भाई सवाल पैदा हुआ कि यह तारीफ के अंदर इस्म का लफ्ज क्यों बढ़ाया, कि मफूले मुतलक वो उस हदस का नाम है तो ये इसम का लफ्ज क्यों बढ़ाया। मुख्तसर तारीफ करते और यूं कहते कि मफूले मुतलक वो हदस है, और इन्होंने क्या कहा, ये उस हदस का नाम है। तो आपको साहिब जामी वजह बतलाएंगे, भाई वजह ये कि वो जो हदस है वो तो माना है। भाई जैद ने खारिज में और वाकई में किसी को जर्ब लगाई, तो वो जर्ब किसकी सिफत है, जैद की सिफत है, और वह माना का नाम है जो जैद की सिफत है। ये जो जुबान से मैं कह रहा हूं जरबा जैदुन जरबन, ये वाला जरब जैद की सिफत नहीं है, ये तो लफ्ज का नाम है, और ये लफ्ज तो वो है जो मैं जुबान से अदा कर रहा हूं, ये तो मेरी सिफत है, ये जो जुबान से मैंने लफ्ज बोला ये तो जैद की सिफत नहीं। जैद की सिफत तो क्या है, वो जो उसने खारिज के अंदर जरब वाला फेल किया है, तो वो जरब फेल अब उसकी सिफत है और वो माना है, वो लफ्ज का नाम नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो वो जो हदस होता है वो माना का नाम है, मैंने आपको बतलाया हदस यानी मसदर वो एक माना का नाम है, खारिज में इसका वजूद नहीं होता। तो जब वो माना का नाम है तो अब तारीफ किसकी चल रही है, मफूले मुतलक की, और मफूले मुतलक के बारे में नहवी बहस करता है, और नहवी जो है वो माना से बहस नहीं करता, अरबी के अल्फाज से बहस करता है। तो अगर इसम का लफ्ज ना होता तो फिर इश्काल होना था कि मफूले मुतलक वो तो माना का नाम है भाई, और नहवी तो लफ्जों के बारे में बहस करता है, तो फिर नहवी इसके बारे में कैसे बहस करता है जब ये लफ्ज ही नहीं है। तो बतला दिए कि नहीं भाई, वो जो हदस है उसका नाम मफूले मुतलक है, उसका तो इसीलिए कहा इस्मो मा, उस हदस का इसम जो है मफूले मुतलक है, और मफूले मुतलक जब इसम है तो ये लफ्ज हुआ, और नहवी भी किसके बारे में बहस करते हैं, लफ्जों के बारे में। नहवी लफ्जों के बारे में बहस करता है ना कि अरबी जुबान के अल्फाज को आपस में जोड़ना कैसे है, और मुफरत किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, जुमला कैसे बनता है, मौसूफ सिफत कैसे बनते हैं, फिर एराब के बारे में बतलाता है, रफा कहां पढ़ना है, नसब कहां पढ़ना है, जर कहां पढ़ना है। तो ये देखो ये सारी लफ्जों की बहस है, और अगर आप इसम का लफ्ज तारीफ में नहीं बढ़ाएंगे तो फिर तो खराबी क्या लाजिम आएगी। मालूम हुआ मफूल मुतलक को हदस है, और हदस तो माना है, जब वो माना है तो नहवी उसके बारे में बहस कैसे करता है, हालांकि नहवी तो बहस करता है मफूल मुतलक के बारे में। तो साहिब काफिया ने उसका गोया जवाब दे दिया कि उस हदस का नाम मफूल मुतलक है, वो हदस नहीं मफूल मुतलक बल्कि उसका नाम मफूल मुतलक है भाई। तो कहते हैं वह इन नमा जीदा लफ्जुल इस्मी, और कहते हैं इसम का लफ्ज तारीफ के अंदर बढ़ाया गया, लिअन्नमा फअलहुल फाइलु हुवल माना, इसलिए क्योंकि वो हदस जिसको फाइल ने किया है, हुवल माना वो तो माना है भाई, हदस तो माना का नाम है। वल मफूलुल मुतलक मिन अकसामिल लफ्जी, और मफूल मुतलक जो है वो तो लफ्ज की अकसाम में से है। वयदखुलु फीहिल मसादिरु कुल्लुहा, कहते हैं इसके अंदर सारे मसादिर दाखिल हो रहे हैं। भाई अभी तक जो तारीफ की कि मफूल मुतलक जो है इस्म मा वो नाम है उस हदस का जिसको किसी फेल के फाइल ने किया हो, यानी मुख्तसर लफ्जों में कहो जिसको फाइल ने किया हो। मफूल मुतलक वो नाम है उस हदस का जिसको फाइल ने किया हो, तो सारे मसादिर इसके अंदर दाखिल हो गए क्योंकि हर मस्दर के लिए कोई फाइल चाहिए, बगैर फाइल के मस्दर का वजूद नहीं। जर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए? जारिब, जारिब नहीं तो जर्ब भी नहीं। शुर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए? शारिब चाहिए, शारिब नहीं तो शुर्ब भी नहीं। तो फाइल तो हर मस्दर के लिए कोई ना कोई होता है। तो जब कहा कि मफूल मुतलक वो उस हदस का नाम है जिसको फाइल ने किया हो, तो सारे मसादिर इसके अंदर दाखिल हो गए, चाहे वो इबारत के अंदर मरफू आ रहे हैं, चाहे मंसूब हैं, चाहे मजरूर हैं, जो भी एराब उन पर आ रहा हो वो सब क्या हैं? उनको किसी फाइल ने किया है, बगैर फाइल के तो उनका वजूद नहीं, तो वो भी मफूल मुतलक की तारीफ में दाखिल हो गए। अब आगे मजकूर इनकी कैद के जरिए बाकी मसादिर को निकाल देंगे। तो कहते हैं वयदखुलु फीहिल मसादिरु कुल्लुहा, और इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं तमाम मसादिर। मजकूर इन सिफतुन लिल फेली, ये सिफत है फेल की, यानी वो फेल मजकूर होना चाहिए। फिर तारीफ देखें, हुस्मु मा फालहु फाइलु फेलिम मजकूरिन, मफूल मुतलक वो नाम है उस हदस का जिसको फेल मजकूर के फाइल ने किया हो। अब जब ये फेल के साथ मजकूर की सिफत आ गई तो अब बाकी सारे मसादिर निकल गए जिनके साथ उनका फेल मजकूर नहीं होता। मसलन आगे एक मिसाल जिक्र करेंगे, अज़र्बु वाक़िउन अला ज़ैदिन, वो ज़र्ब जो है किसी मखसूस ज़र्ब की तरफ इशारा किया। मसलन आपने और साथी के दरमियान एक ज़र्ब की बात चल रही थी कि आज किसी को उस्ताद ने मारा है, लेकिन किसको मारा है पता नहीं, तो आपको इत्तिला मिल गई कि किसकी पिटाई हुई है। तो अब आप अपने उस साथी को बताते हैं, अज़र्बु वाक़िउन अला ज़ैदिन, वो ज़र्ब ज़ैद पर वाक़े हो रही है। मसलन अभी भी ज़र्ब लग रही है। अब इस जुमले के अंदर देखो, अज़र्बु मस्तर आया और ये मुबतदा है, मुबतदा है, और ये तो मफूल मुतलक नहीं है, तो ये ज़र्ब ये भी तारीफ के अंदर दाखिल हो रहा है क्योंकि ये ज़र्ब इसको भी किसी न किसी फाइल ने किया है। इसको मफूल मुतलक की तारीफ में दाखिल होना चाहिए या खारिज होना चाहिए? खारिज होना चाहिए क्योंकि यह तो मुबतदा है, मफूल मुतलक तो मनसूब होता है। तो जब मजकूरिन की कैद लगाई तो अब यह ज़र्ब भी निकल गया तारीफ से, इसलिए क्योंकि मफूल मुतलक का फेल मजकूर होता है और अज़र्ब वाक़िउन अला ज़ैदिन, यहां तो ज़र्ब का कोई फेल मजकूर नहीं है, न लफ्जों में जिक्र है और न तकदीरन निकालने की जरूरत है। तो मजकूरिन की कैद से पहले सारे मसादिर तारीफ में दाखिल थे और मजकूरिन की कैद लगाई तो वह सारे तारीफ से निकल गए। तो कहते हैं मजकूर इन सिफतुन लिल फ़िअल, ये मजकूर जो है सिफत है फेल की, वह हुआ आम मिन अन यकूना, यहां से तामीम कर रहे हैं भाई कि मजकूर होने से मुराद ये नहीं है कि बाकायदा लफ्जों के अंदर वो फेल जिक्र हो, बल्कि मजकूर होना आम है, चाहे हकीकतन लफ्जों में फेल जिक्र हो, जैसे ज़रबतु ज़रबन, यहां ज़रबन के लिए ज़रबतु बाकायदा लफ्जों में हकीकतन मजकूर है, और या फिर उसका फेल हुक्मन मजकूर हो, हुक्मन मजकूर हो, और हुक्मन मजकूर होने की दो सूरतें जिक्र करेंगे कि कभी फेल मुकद्दर होगा और कभी फेल इसम की सूरत में होगा। किसकी सूरत में? इसम की सूरत में। फेल लफ्जों में नहीं है बल्कि मुकद्दर है, जैसे अल्लाह ताला का कौल है फजर बर रिकाब, फजर बर रिकाब, देखो ये जर बर रिकाब ये मफूल मुतलक है, मनसूब है भाई, मनसूब है, और इसका फेल मुकद्दर है भाई, आई फज़रिबू ज़र्बर रिकाब, बस तुम लोग गर्दने मारो, यानी कुफार से अगर तुम्हारा सामना हो जाए और उनसे जंग की नौबत आए तो उनका मुकाबला करो, उनको कत्ल करो भाई। माना समझ में आ गया? तो देखो फज़रबर रिकाब ये अब मफूल मुतलक है, लफ्जों में तो फेल मजकूर नहीं लेकिन तकदीरन फेल मौजूद है यहां पर, तो मजकूर होना आम है, चाहे हकीकतन फेल मजकूर हो, चाहे हुक्मन फेल मजकूर हो। तो देखो फजर बर रिकाब इसका फेल मुकद्दर है, तो गोया हुक्मन इसका फेल भी मजकूर है। और इसी तरह कभी कभार फेल लफ्जों में आता ही नहीं बल्कि सिफत का सीगा आ जाता है और उससे आगे मफूल मुतलक आ जाता है, जैसे जैदुन जारिबुन जरबन, जैदुन मुब्तदा है, जारिबुन یہ خبر ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور آگے اسی سے ضرباً مفعول مطلق آ گیا، تو یہاں پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو فعل مذکور نہیں، نہ لفظاً ہے نہ تقدیراً ہے، کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں پر بھی حکمن فعل مذکور ہے، اس لیے کیونکہ یہ ضارب اسم فاعل ہے اور اسم فاعل بھی کس کے معنی میں ہوتا ہے، فعل کا معنی ہی یہ ادا کرتا ہے، تو لہذا گویا فعل حکمن یہاں بھی مذکور ہے. بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَن يَكُونَ مَذْكُورًا حَقِيقَةً كَمَا إِذَا كَانَ مَذْكُورًا بِعَيْنِهِ، اور فعل کا مذکور ہونا عام ہے کہ وہ مذکور ہو حقیقتاً، کما اذا کان مذکوراً بعینہ، جیسے کہ فعل مذکور ہو بعینہ اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی لفظوں کے اعتبار سے ہی. نحو ضربتہ ضرباً، دیکھا اس کے اندر ضربتہ فعل باقاعدہ لفظوں میں مذکور ہے، او حکمن، یا وہ اس کا مذکور ہونا حکمن ہو، کما اذا کان مقدراً، جیسے کہ فعل مقدر ہو. نحو فضرب الرقاب، جیسے ضرب الرقاب بھائی اس کا فعل مقدر ہے، ای اضربوا ضرب الرقاب. او اسمن، یہ اسمن کا عطف ہے مقدرن پر. حکمن کی دو صورتیں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ فعل حکمن مذکور ہوگا، اور حکمن مذکور ہونے کی دو صورتیں ہیں، کون سی؟ کہ یا تقدیرن ہوگا یا اسم کی صورت میں ہوگا. او اسمن، یا ایسا اسم ہوگا، فی ہی معن الفعل، جس کے اندر فعل والا معنی ہو. اسمن بھئی یہ نکرہ آیا، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے، تو یہاں اسمن ہے نکرہ، اور فی ہی معن الفعل یہ پورا جملہ اسمیہ اس کے بعد آیا. فی ہی ہے خبر مقدم، اور معن الفعل مضاف مضافلے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے اسمن کی. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں، تو کہتے ہیں او اسمن فیہ معن الفعل، یا وہ ایسا اسم ہو جس کے اندر فعل والا معنی ہو. نحو ضارب ضربا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مذکور ہونا عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن، اور حکمن پھر چاہے تقدیراً ہو یا اسم کی صورت میں ہو بھائی. وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها، اور نکل گئے اس سے وہ مصادر جن کا فعل مذکور نہیں ہوتا. لا حقیقتاً ولا حکمن، نہ تو حقیقتاً فعل مذکور ہوتا ہے اور نہ حکمن بھائی. نحو الضرب واقع على زيد، جیسے اس کے اندر یہ جو الضرب ہے اس کا فعل نہ حقیقتاً ہے اور نہ حکمن ہے، اس لیے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اس کے لیے کسی فعل کے یہاں مقدر نکالنے کی حاجت ہی نہیں ہے، تو لفظوں میں بھی فعل نہیں اور تقدیرن بھی نہیں بھائی. الضرب واقع علی زید، وہ ضرب زید پر واقع ہو رہی ہے. بمعناہ صفت ثانیت للفعل، کہتے ہیں بمعناہ یہ دوسری صفت ہے فعل کے لیے، پہلی صفت کیا تھی؟ مذکور، اور دوسری کیا ہے؟ بمعناہ. بمعناہ اور بمعناہ کی ہا ضمیر جو ہے وہ اسم جو پیچھے آیا تھا تعریف کے اندر اس کو راجع کر دیں، یا وہ جو ما آیا تھا اس کی طرف راجع کر دیں. وہ ما کون ہے؟ مسمى ہے، ایک اسم ہوتا ہے ایک مسمى، جیسے ایک زید ہے ایک زید کی ذات ہے، تو لفظ زید یہ ہوا اسم، اور جیسے ہی میں نے لفظ زید زبان سے کہا آپ کے ذہن میں فوراً زید کی صورت آ گئی، دیکھا وہ مسمى جو ہے اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، تو زید اور ہے اور اس کا نام اور ہے، اسم اور چیز ہے، مسمى اور چیز ہے. تو یہاں پر بھی بمعناہ کی ہا ضمیر یا تو اس اسم کو راجع کر دیں یا ما کو راجع کر دیں، اور وہ فعل جو ہے اس اسم کے معنی میں ہو، وہ جو مفعول مطلق ذکر ہو رہا ہے آگے، یہ فعل کیا ہو؟ یہ فعل اس کا ہم معنی ہو، جیسے ضرب زید ضربن، ضرب زید ضربن، یہ ضربن یہ ہے وہ حدث جو کس نے کیا ہے؟ فعل مذکور کے فاعل نے، اور فعل کیا ذکر ہے؟ ضربا، اور یہ ضربا اس اسم یعنی ضربن کا ہم معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بمعناہ کیا ترجمہ؟ کون کس کے معنی میں ہو؟ مصدر اس فعل کے معنی میں نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، وہ فعل بمعناہ اس مصدر کے معنی میں ہو. توجہ ہے، وہ جو فعل ہے یہ فعل کی صفت ہے نا، وہ ایسا فعل، فعل مذکور بمعناہ، ایسا فعل جو مذکور ہو اور جو اس اسم کے معنی میں ہو. تو ضرب زید ضربن، یہ ضربہ کس معنی میں ہے؟ ضرب مصدر کے معنی میں ہے بھائی. جو کہتے ہیں صفت ثانیت للفعل، یہ صفت ثانیہ ہے فعل کے لیے، ولیس المراد بہ، یہاں بھی اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ وہ فعل اس حدث کے یا اس مصدر کے معنی میں ہو، ضربا زید ضربا، یعنی یہ ضربا کس کے معنی میں ہو، ضرب کے معنی میں ہو. کہتے ہیں نہیں بھائی، ضربا ضرب کے معنی میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ ضرب مصدر ہے اور فعل، فعل کا معنی تو مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے، ایک مصدر، ایک زمانہ اور ایک نسبت الی الفاعل. ایک مصدر، ایک زمانہ اور ایک نسبت الی الفاعل. تو فعل کے مفہوم میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز مصدر ہے یعنی ضرب ہے. تو معلوم ہوا فعل ضرب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ضرب فعل کا جز ہے. بھائی توجہ ہے. اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ وہ فعل اس اسم یعنی اس مصدر کے، یعنی یوں کہو فعل اس مفعول مطلق کے معنی میں ہو، یوں کہو آسان لفظوں میں فعل کو کیا ہونا چاہیے، مفعول مطلق کے معنی میں ہونا چاہیے. حالانکہ مفعول مطلق تو مصدر ہے، مصدر تو اکیلا ہے، اور فعل کے اندر مصدر بھی ہے، زمانہ بھی ہے اور نسبت الی فاعل بھی ہے. تو فعل اس مصدر کے معنی میں ہے یا یہ مصدر اس فعل کا جز ہے؟ بھائی یہ مصدر اس فعل کا جز ہے، فعل تو اس کے معنی میں نہیں ہو سکتا، فعل کل ہے اور مصدر جز ہے. بھائی دونوں میں فرق ہے. تو صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ فعل کے اس کے معنی میں ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ فعل اس کے معنی پر اسی طرح مشتمل ہو جس طرح کل جز پر مشتمل ہوتا ہے. فعل اس مفعول مطلق کے معنی پر اسی طرح مشتمل ہو جس طرح کل جز پر مشتمل ہوتا ہے. اور ضربا یہ ضرب کے معنی پر مشتمل ہے یا نہیں، اور ضرب اس کا جز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو فعل مشتمل ہے ضرب یعنی اس مصدر کے معنی پر، جیسے کل کس پر مشتمل ہوتا ہے، جز پر. جیسے آپ دیکھیں کسی سے کہتے ہیں، اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اشتمال الکل علی الجز، آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب 10 ابواب پر مشتمل ہے. کیا معنی؟ یعنی یہ کتاب ہے کل اور اس کے اندر 10 باب ہیں، تو 10 باب ہوئے اس کے جز. تو کس طرح بولتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں اردو میں، یہ کتاب 10 ابواب پر مشتمل ہے. دیکھا کل کے لیے کل جز پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یا دوسری مثال لے لو، آپ کسی سے کہتے ہیں یہ چائے خالص دودھ پر مشتمل ہے. اب دیکھو معلوم ہوا خالص دودھ اس چائے کا جز ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے 30 پاروں پر مشتمل ہے، معلوم ہے قرآن کل ہے اور 30 پارے اس کا جز ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، فعل کا اس مصدر کے ہم معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل اس کے معنی پر مشتمل ہو اسی طرح جس طرح کل مشتمل ہوتا ہے جز پر. تو یہاں پر بھی فعل اس کے معنی پر مشتمل ہے بھائی، اور مصدر جو ہے وہ اس فعل کے معنی کا جز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اَنَّ الْفِعْلَ قَائِنٌ بِمَعْنَى ذَلِكَ الْاِسْمِ. قَائِنٌ اَيْ ثَابِتٌ، قَائِنٌ کی جگہ ذرا ثَابِتٌ لے آئیں، پھر بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ فعل اس اسم کا ہم معنی ہو، فعل اس مصدر کا ہم معنی ہو. کہتے ہیں وليس المراد به، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان الفعل کائن بمعنى ذلك الاسم، کہ وہ فعل ثابت ہو اس اسم کے معنی میں. اس اسم سے کیا مراد ہے؟ وہ مصدر. مصدر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فعل اس مصدر کے معنی میں ثابت ہو. فان معنى الاسم جزء معناه، فان یہاں جو یہ فا آئی، یہ فا کبھی کبھار علت بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ کیونکہ یا اس وجہ سے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ فا کیا بیان کر رہی ہے؟ علت. کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فعل اس اسم کے یعنی اس مصدر کے معنی میں ہو، کیونکہ فإن المعنی الاسم جزء معناه، اس لیے کیونکہ وہ جو اسم کا معنی ہے یعنی وہ جو مصدر کا معنی ہے، جزء معناه، وہ فعل کے معنی کا جز ہے بھائی. تو پھر کیا مراد ہے جب یہ مراد نہیں؟ کہتے ہیں بل المراد، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان معنی الفعل مشتمل علیہ، کہ فعل کا معنی اس مصدر کے معنی پر مشتمل ہے. اشتمال الکل علی الجز، جس طرح کل مشتمل ہوتا ہے جز پر. فخرج به مثل تادیبن فی قولک, پس تادیبن جیسے لفظ نکل گئے, فی قولک جو کہ آپ کے اس قول میں ہیں, ضربتہ تادیبن, ضربتہ تادیبن. بھئی یہ جو بمعناہ کی قید لگائی نا صاحب کافیہ نے, یہ در اصل مفعول لہو کو نکالنا چاہتے ہیں, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ضربا زید تادیبن, زید نے ضرب لگائی, زید نے پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے, تو ضرب بھی زید کا فعل, اور آگے جو تادیبن مفعول لہو آ رہا ہے وہ بھی زید کا فعل ہے. یہ ادب سکھانے کا کام کس نے کیا؟ زید نے ہی کیا ہے, توجہ ہے. تو زید نے جو ضرب لگائی اس میں دو حیثیتیں ہیں, اس حیثیت سے کہ اس ضرب سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسی فعل کو ضرب کہیں گے, اور اس حیثیت سے کہ اس فعل سے دوسرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور وہ ادب سیکھتا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کو تادیب کہیں گے. تو ضرب بھی زید کا فعل اور تادیب بھی زید کا فعل ہے. تو جب تعریف کی کہ مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو, توجہ ہے, مفعول مطلق کی تعریف ہو رہی ہے کہ مفعول مطلق اس حدث کا نام ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے, تو مفعول لہو بھی اس میں داخل ہو گیا کیونکہ ضربا زید تادیبن, تو یہ تادیب والا فعل بھی کس نے کیا؟ یہی ما قبل میں جو فعل مذکور ہے اس کے فاعل یعنی زید نے, ضربا زید تادیبن, تادیبن سے پہلے کیا ہے؟ ضربا زید ہے, تو یہ جو فعل مذکور ہے اس کا جو فاعل زید ہے اسی نے یہی تادیب والا فعل بھی کیا ہے, تو مفعول لہو بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو رہا تھا. لیکن جب یہ کہہ دیا بمعناہ, وہ فعل اس مصدر کا ہم معنی ہو, یعنی وہ فعل اس مصدر کے معنی پر مشتمل ہو, تو اب مفعول لہو نکل گیا کیونکہ ضربا زید تادیبن, یہ جو ماقبل میں فعل ضربا آیا یہ اس تادیبن کے معنی پر مشتمل نہیں. کیا ضربا کے اندر تادیب والا مصدر موجود ہے؟ ضربا کے اندر تو ضرب مصدر تو موجود ہے, تادیبن مصدر موجود نہیں. تو جب بمعناہ کی قید لگا دی تو مفعول لہو نکل گیا. بھائی کیوں نکل گیا؟ کیونکہ ما قبل میں جو فعل آیا ہے وہ اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے, یعنی یہ فعل کے معنی کا جز نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں فخرج بہ, تو اس قید کی وجہ سے, یہ جو بمعناہ کی قید آئی اس کی وجہ سے نکل گیا مثل تادیبن, تادیبن جیسا لفظ, فی قولی کا جو کہ آپ کے اس قول میں ہے, ضربتہ تادیبن. بھئی کیوں نکل گیا؟ کہتے ہیں فإنہ, اس لیے کیونکہ یہ جو تادیب ہے, وَإِن كَانَ مِمَّا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ, اگرچہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے, لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَعْنَى الْفِعْلِ, لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر فعل کا معنی مشتمل ہو. ضربا ضرب کے معنی پر مشتمل ہے, تادیب کے معنی پر مشتمل نہیں. یہ معنی ہے لیکن نہ لیس مما یشتمل علیہ معنی الفعل, لیکن تادیب جو ہے ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر اس فعل کا معنی مشتمل ہے. وَكَذَلِكَ خَرَجَ بِهِ مِثْلُ كَرَاهَتِي فِي نَحْوِ كَرِهْتُ كَرَاهَتِي, کہتے ہیں اسی طرح خَرَجَ بِهِ اس بِمَعْنَاهُ کی قید کے ذریعے نکل گیا مِثْلُ كَرَاهَتِي, کراہتی جیسا لفظ بھی, فِي نَحْوِ كَرِهْتُ كَرَاهَتِي, جو اس جیسی مثالوں میں ہے. كَرِهْتُ كَرَاهَتِي, کریہ یکرہ کراہتن کے معنی ہے ناپسند کرنا, کسی چیز کو ناگوار سمجھنا. تو مثلاً بھائی آپ کسی جگہ پر کہیں گئے تھے اور آپ کے سامنے کسی نے کوئی فیل کیا اور آپ نے اس فیل پر ناگواری کا اظہار کیا, آپ نے اس کے اس فیل کو ناپسند کیا, لیکن بعد میں جب آپ واپس آئے آپ نے غور کیا تو آپ نے سوچا او ہو میں نے تو ایک پہلو سے اس فیل کو دیکھا تھا, اس اعتبار سے تو مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن دوسرے پہلو سے تو یہ اچھا فیل تھا, اس بیچارے نے تو اپنی جانب سے اچھا فیل کیا تھا. تو وہ جو ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار آپ نے اس موقع پر کیا تھا, بعد میں اب آپ کو اپنی وہ ناپسندیدگی اور ناگواری بری لگ رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں کرہت کراہتی, کہ میں نے ناگوار سمجھا, کراہتی اپنی ناگواری کو, میں نے اپنی ناگواری کو ناگوار سمجھا, یا یوں کہیں میں نے ناپسند کیا اپنی ناپسندیدگی کو. تو دیکھو اس جملے کے اندر یہ جو کراہتی کا لفظ آ رہا ہے یہ مفعول بھی ہی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کرہت زیدن, میں نے زید کو ناپسند کیا, دیکھو زیدن مفعول بھی ہی ہے بھائی. یا کرہت شیئا, میں نے اس چیز کو नापसंद किया, नागवार समझा, तो अशैया क्या बन रहा है, मफूल भी ही बन रहा है। इसी तरह अशय की जगह जरा कराहती ले आए, करीह तू कराहती, मैंने नापसंद किया, किस चीज को नापसंद किया, कराहती अपनी नापसंदीदगी को। तो देखो इस जुमले का माना समझ में आ रहा है कि कराहती मफूल भी ही बन रहा है, तवज्जो है, ये क्या बन रहा है, ये मफूल भी ही बन रहा है। लेकिन इश्काल होता है कि ये कराहती भी मफूल मुतलक की तारीफ में दाखिल हो रहा है, तवज्जो है, करह तो कराहती, ये कराहती क्या है, मफूल भी ही है, इसको तारीफ के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तारीफ किसकी बयान हो रही है, मफूल मुतलक की, और ये कराहती तो मफूल भी ही है, इसको तो तारीफ में दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तारीफ के अंदर दाखिल हो रहा है। किस तरह दाखिल हो रहा है, मफूल मुतलक की क्या तारीफ की, वो हदस है जिसको फिल मस्कूर के फाइल ने किया हो, और कराहती के अंदर जो कराहत का लफ्ज आ रहा है, तवज्जो है, कराहती के अंदर जो कराहत का लफ्ज आ रहा है, इससे माकबल करी तो फेल मस्कूर है, तो ये जो कराहत है इस, ये फेल किसने किया है, फेल मस्कूर के फाइल ने किया है, और नीज ये कराहत का लफ्ज है, माकबल में जो करहितु आया वो करहितु फेल इसका हम माना है, यानी वो फेल इसके माना पर मुश्तमिल है, उस करहितु के अंदर कराहत मस्तर मौजूद है। भाई इश्काल समझ में आया कि करहितु कराहती के अंदर कराहती मफूल भी ही है, लेकिन आपकी मफूल मुतलक की तारीफ इस पर सादिक आ रही है, इसलिए क्योंकि यह भी वो हदस है जिसको माकबल में जो फेल मस्कूर है इसके फाइल ने किया है, नीज वो फेल इसका हम माना भी है, यानी फेल इस कराहत के माना पर मुश्तमिल है। करहतु, करहतु फेल है, और इसके अंदर कौन सा मस्तर है, कराहत वाला मस्तर मौजूद है, और आगे भी कराहती वही कराहत वाला मस्तर आ रहा है, तो एतराज समझ में आया, तो लिहाजा एतराज यह हुआ कि आपकी तारीफ दुखूले गैर से मान्य नहीं, इसके अंदर तो मफूल भी दाखिल हो रहा है जैसे करहतु कराहती। तो साहिब जामी उसका जवाब देंगे, कहते नहीं भाई, ये जो बिमानाहु की कैद आ गई, इस कैद की वजह से यह कराहती भी मफूल मुतलक की तारीफ से निकल गया। भाई किस तरह यह निकल गया इस तारीफ से, तो साहिब जामिया आपको बतलाएंगे कि करहतु के बाद जो कराहत का लफ्ज जिक्र किया जाए तो इसके अंदर दो एतबार हो सकते हैं भाई, एक एतबार से देखें तो फिर यह मफूल मुतलक बनेगा, दूसरे एतबार से देखें तो फिर यह मफूल बही बनेगा। अगर यह एतबार किया जाए कि यह फेल मस्कूर के फाइल की सिफत है, देखो इधर देखो, जैद ने जर्ब लगाई खारिज में, तो यह जर्ब जैद की सिफत है, तवज्जो है, इसी तरह मैं जुमले में कहता हूं जराबा जैदुन जरबन, माकबल में जो फाइल है उसने यही वाला फेल किया है, तो मालूम हुआ जो आगे जरबन आ रही है वो इस जारिब की सिफत है, वो इस जारिब की सिफत है, और ये वही जरब मस्दर है जिससे माकबल वाले फेल जराबा का इश्तिकाक हुआ है। तवज्जो है, फेल का इश्तिकाक किससे होता है, मस्दर से, और जिस मस्दर से फेल का इश्तिकाक होता है फेल के अंदर भी वही वाला मस्दर मौजूद होता है। जराबा का इश्तिकाक किससे हुआ है, जर्ब मस्तर से, तो जराबा के अंदर कौन सा मस्तर मौजूद है, जर्ब वाला, कोई और मस्तर नहीं बल्कि वही जर्ब जिससे इसका इश्तिकाक हुआ है वही इसके अंदर मौजूद है। तो कहते हैं यहां पर भी ये जो कराहत का लफ्ज करहतु के बाद जिक्र किया जाए इसके अंदर दो एतबार हैं, एक एतबार से मफूल मुतलक है, किस तरह कि बाई एतबार अगर कराहत को जिक्र किया जाए, तवज्जो से सुनो, अगर बाई एतबार कराहत को जिक्र किया जाए कि यह माकबल में जो फेल जिक्र हुआ यह उसके फाइल की सिफत है, जराबा जैदुन जरबन, यह जैद फाइल है, इसकी सिफत क्या है, जर्ब है, तो इसी तरह करीह तू कराहतन, ये यूं कहें करीहा जैदुन कराहतन कह दें, करीहा जैदुन कराहतन, तो इसके अंदर भी देखो जो आखिर में कराहतन मफूल मुतलक आ रहा है ये मकबल वाला जो फाइल है उसकी सिफत है, उसने यही फेल किया है तो ये कराहत उसकी सिफत है। तो कराहत को बाई एतबार अगर जिक्र किया जाए कि ये जो माकबल में फाइल जिक्र हुआ है ये उसकी सिफत है, और इसी से माकबल वाले फेल का इश्तिकाक भी हुआ है, जब इसी से इस फेल का इश्तिकाक भी हुआ है मालूम हुआ फेल इसके माना पर भी मुश्तमिल है, जब फेल इसके माना पर भी मुश्तमिल है तो बाई एतबार ये मफूल मुतलक है। तवज्जो है, हासिल कलाम सुना रहा हूं क्या, कि करह तो कराहतन, ये जो कराहतन है इसको बाई लिहाज बाई एतबार अगर जिक्र किया जाए कि फाइल ने यही वाला फेल किया है, फाइल ने, जब फाइल ने यही वाला फेल किया है तो ये कराहत फाइल की सिफत है। जराबा जैद, जैद ने पिटाई की तो जैद की सिफत क्या है, जर्ब, तो जब कराहत वाला फेल फाइल ने किया है तो यह कराहत उसकी सिफत हुई। تو آپ بہ اعتبار کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں کہ فاعل نے یہی والا فعل کیا ہے اور یہی وہ مصدر ہے جس سے اس فعل کا اشتقاق ہوا ہے، کیونکہ فاعل کی صفت وہی فعل بنے گا نا جو فاعل نے کیا ہے. جب کریہتو فعل کیا تو کریہتو تو کس سے مشتق ہے؟ کراہت سے. تو معلوم ہوا یہ وہی مصدر ہے جس سے اس فعل کا اشتقاق ہوا ہے. پھر سنو، آپ کریہتو فعل کے بعد کراہت کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں، کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں بائی اعتبار کہ یہی فعل فاعل نے کیا ہے اور یہی اس کی صفت ہے اور یہی وہ مصدر ہے جس سے اس فعل کا اشتقاق ہوا ہے، اور فعل کا اشتقاق جس مصدر سے ہوا ہوتا ہے فعل کے اندر بھی وہی مصدر ہوتا ہے، اور جب فعل کے اندر بھی وہی مصدر ہے تو فعل دیکھو اس کے معنی پر مشتمل ہوا. جب فعل اس کے معنی پر مشتمل ہوا تو بائی اعتبار یہ کراہت کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، کیونکہ کیا قید لگائی تھی؟ بمعناہو، فعل اس کے معنی پر مشتمل ہو. فعل اس کے معنی پر مشتمل ہو گیا یا نہیں؟ اور نیز دوسرا اعتبار اس کراہت کے اندر یہ ہے کہ کریہتو کے بعد کراہت کو آپ ذکر کرتے ہیں بائی اعتبار کہ آپ کا فعل اس پر واقع ہوا ہے. جیسے ضربتو زیدن، یہ میری ضرب کس پر واقع ہے؟ زید پر. تو زید کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، توجہ ہے. تو اسی طرح کریہتو کے بعد اگر کراہت کے لفظ کو بائی لحاظ ذکر کیا جائے کہ آپ کا کراہت کا فعل اس پر واقع ہوا ہے تو بائی لحاظ یہ مفعول بھی ہی ہے، فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے. کریہتو کراہتی، اس کے اندر جو کراہتی ذکر ہے یہ مفعول بھی ہی ہونے کی حیثیت سے ذکر ہے کہ اس پر فعل واقع ہوا ہے، تو بائی لحاظ فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں. باریک بات ہے، گہری بات ہے. کریہتو کراہتی، یہ کراہتی کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، تو یہاں پر جو کراہتی ذکر کیا گیا اس کو مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے ذکر کیا گیا، یعنی اس پر فعل واقع ہے. جب فعل اس پر واقع ہے تو بائیں لحاظ تو فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں. جیسے ضربت زیدن، میں نے کس کی پٹائی کی؟ زید. زید مفعول بھی ہے، تو کیا ماقبل میں ضربت زید کے معنی پر مشتمل ہے؟ ماقبل میں ضربت زید کے معنی پر مشتمل ہے نہیں. تو یہاں پر بھی کریہتو کراہتی کے اندر جو کراہتی ذکر ہو رہا ہے وہ اس حیثیت سے کہ اس پر آپ کے کراہت کا فعل واقع ہو رہا ہے. جب کراہت کا فعل اس پر واقع ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے تو فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے. فعل اس کے معنی پر کب مشتمل تھا؟ جب یہ اعتبار کرتے کہ اسی سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے. مثلا کریہتو کراہتن، توجہ سے تو دیکھو، کریہتو کراہتن، یہاں پر کراہتن کو میں نے کس اعتبار سے ذکر کیا؟ کہ یہ فعل اسی کراہت سے مشتق ہے اور یہی کراہت اس فعل کے فاعل کی صفت ہے. تو بائی اعتبار جب اسی سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے تو فعل اس کے معنی پر مشتمل ہے بھائی. اور جب میں نے کہا کریہتو کراہتی تو اس کے اندر جو کراہتی کو میں نے ذکر کیا وہ اس اعتبار سے ذکر کیا کہ فعل اس پر واقع ہوا ہے بھائی، اور جب فعل اس پر واقع ہے تو اس اعتبار سے تو فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں. اگر اس اعتبار سے ذکر کرتے کہ یہ وہی مصدر ہے جس سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے تو اس اعتبار سے تو فعل اس کے معنی پر مشتمل ہے، لیکن بائی اعتبار کراہتی کو ذکر کیا کہ یہ مفعول بھی ہی ہے یعنی اس پر فعل واقع ہوا ہے تو اس اعتبار سے تو فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں. زاربا کس سے مشتق ہے؟ ضرب سے. تو جب زاربا ضرب سے مشتق ہے تو زاربا کے اندر ضرب والا معنی بھی ہے، تو لہذا جب میں ضرب تو ضربن کہوں گا تو یہ ضربن وہی مصدر ہے جس سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے فعل اس کے معنی پر بھی مشتمل ہے. اور جب آگے میں کریہتو کراہتی کہتا ہوں تو کراہتی کو میں نے کس حیثیت سے ذکر کیا؟ کہ اسی کراہت سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے، یا اس اعتبار سے ذکر کیا کہ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے؟ اس پر آپ کا فعل واقع ہو رہا ہے. جب اس پر آپ کا فعل واقع ہو رہا ہے اس اعتبار سے تو فعل اس کے معنی پر نہیں مشتمل، کیونکہ فعل اسے مشتق نہیں ہے، یہ تو مفعول بھی ہی ہے بھائی. فرق سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کریہتو کراہتی کے اندر جو کراہتی کا لفظ ذکر ہے وہ کس حیثیت سے ذکر؟ اس حیثیت سے کہ اس پر فعل واقع ہے. جب اس پر فعل واقع ہونے کی حیثیت سے ذکر ہے تو معلوم وہ فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں، اور ہم نے تو کیا کہا تھا؟ فعل اس کے معنی پر مشتمل ہونا چاہیے. تو بھائی اعتبار یہ تعریف سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. تو لہذا اس کا اشکال تعریف پر نہیں کیا جا سکتا. پھر سنو، آپ کریہتو فعل کے بعد کراہت کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں، کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں بائی اعتبار कि यही फेल फाइल ने किया है और यही इसकी सिफत है और यही वो मस्दर है जिससे इस फेल का इश्तिकाक हुआ है, और फेल का इश्तिकाक जिस मस्दर से हुआ होता है फेल के अंदर भी वही मस्दर होता है, और जब फेल के अंदर भी वही मस्दर है तो फेल देखो इसके माना पर मुश्तमिल हुआ, जब फेल इसके माना पर मुश्तमिल हुआ तो बाई एतबार यह कराहत क्या है, मफूल मुतलक है, क्योंकि क्या कैद लगाई थी, बिमाना हो फेल उसके माना पर मुश्तमिल हो। और अगर आप कराहत के मस्दर को फेल के बाद बाई एतबार जिक्र करते हैं कि यह फेल इस पर वाके है भाई, तो बाई एतबार तो फेल इसके माना पर मुश्तमिल नहीं, फेल जिस पर वाके होता है क्या उसके माना पर मुश्तमिल होता है, नहीं। तो वही एतबार जब आप इसको जिक्र करें कि फेल इस पर वाके हुआ है तो इस एतबार से तो फेल इसके माना पर मुश्तमिल नहीं, जब फेल इसके माना पर मुश्तमिल नहीं तो भी माना हो कि कैद से ये निकल गया, क्योंकि हमने तो क्या कैद लगा दी कि फेल उसके माना पर मुश्तमिल होना चाहिए। लिहाजा करह तो कराहतन, ये कराहतन तो मफूल मुतलक है क्योंकि ये एतबार अव्वल के लिहाज से जिक्र किया गया है, और करह तो कराहती के अंदर जो कराहती आया ये इस तारीफ से निकल गया क्योंकि इसके माना पर फेल मुश्तमिल नहीं है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। अब देखिए साहिब जामी इसको और बेहतरीन और मुख्तसर लफ्जों में बयान करेंगे, कहते हैं वकदालिका खराज बिही मिसलू कराहती फी नहवी करह तू कराहती, कहते हैं इसी तरह करह तू कराहती जैसी मिसालों के अंदर जो कराहती का लफ्ज है वो भी इस कैद की वजह से निकल गया। कौन सी कैद, बिमानाहू, बिमानाहू कैद का क्या माना था कि फेल उस मस्दर के माना पर मुश्तमिल हो। अब आपको बताएंगे कि करह तू कराहती के अंदर यह करह तू कराहती के माना पर मुश्तमिल नहीं, जब मुश्तमिल नहीं तो यह निकल गया। फइन लिल कराहती एतबारैनि, इसलिए क्योंकि कराहत के दो एतबार हैं, अहदुहुमा उन दो एतबारों में से एक जो है कौनुहा वो इस कराहत का होना, बिहैसु कामत बिफाइलिल फिअलिल मस्कूरी, कि वो कायम है फिल मस्कूर के फाइल के साथ, यानी उसकी सिफत है। जब मैंने करहतु वाला फेल किया तो मेरी सिफत क्या हुई, कराहत हुई, तो कराहत बाई एतबार के ये माकबल वाले फेल के फाइल की सिफत है, तवज्जो है। तो कहते हैं अहदुहु उन दोनों एतबारों में से एक जो है कौनुहा बिहैसु कामत बिफाइलिल फिअलिल मस्कूरी, वो कराहत का होना है इस तौर पर कि फिल मस्कूर के फाइल के साथ वो कायम है, यानी उसकी सिफत है, उसके सिफत है, उस पर फेल वाके नहीं है बल्कि वो फाइल की सिफ बई एतबार कि वो फेल मस्कूर के फाइल के साथ कायम है, यानी उसकी सिफत है। वश्तु कमीन हा फिअलुन उस्नीदा इलैही, और इसी से इश्तिकाक हुआ है उस फेल का उस्नीदा इलैही जिसका इस फाइल की तरफ इसना, तो बई एतबार अगर उसको जिक्र किया जाए तो वला शक का अन्न मान अल फेल मुश्तमिल अलैहा हीन इजिन, तो कोई शक नहीं कि फेल का माना वो इस पर मुश्तमिल होगा हीन इजिन उस वक्त, यानी जब इस एतबार से जिक्र करें। क्या बात हुई, फिर दोहराएं, मुश्किल बात है इसलिए मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं कि करह तू कराहती, ये जो कराहती आया ये तो मफूल बिही है, ये भी तारीफ में दाखिल हो रहा था, तो कहते हैं भाई ये जो बिमानाहू की कैद आई, बिमानाहू का क्या तर्जमा किया कि फेल उस मफूल मुतलक के माना पर मुश्तमिल हो, या यूं कहो उस मस्दर जो मस्दर आगे मफूल मुतलक जिसको आप बनाना चाहते हैं कि फेल उस मस्दर के माना पर मुश्तमिल हो। तो यहां पर अगर कराहत को बई एतबार जिक्र किया जाए कि फेल मजकूर के फाइल की यह सिफत है और इसी से इश्तिकाक हुआ है उस फेल का जिसका इस्नाद फाइल की तरफ किया जा रहा है, तो फिर इस सूरत में जब इसी से फेल का इश्तिकाक हुआ है तो जाहिर सी बात है फेल इसी के माना पर मुश्तमिल है, जब फेल इसी के माना पर मुश्तमिल है तो बिमानाहू की कैद इसमें पूरी हो गई कि फेल इसी के माना पर मुश्तमिल है तो फिर यह मफूल मुतलक कहलाएगा। और अगर बाई एतबार इसको जिक्र किया जाए कि आपका फेल उस पर वाके है तो बाई एतबार तो फेल उसके माना पर मुश्तमिल नहीं है, लिहाजा फिर यह मफूल मुतलक नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वसानी ही मा कौनुहा बिहैसु वका अलैहा फिअलुल कराहती, और दूसरा एतबार यह है कि कौनुहा वो कराहत का होना बिहैसु इस तौर पर कि वका अलैहा फिअलुल कराहती के उस पर माकबल में जो कराहत वाला फेल आया है वो इसके ऊपर वाके हुआ है। फैदा दुकिरत बाद अल फेली, बस जब इस कराहत को जिक्र किया जाए फेल के बाद, बिल एतबार इल अवली, किस एतबार से, पहले एतबार से, कमाफी कौली का, जैसे कि आपके इस कौल में है करीह तु कराहतन, जैसे इस कौल में है कि करीह तु के बाद यह कराहतन जिक्र है, किस हैसियत से कि यह करीह तु का फाइल कौन है, मुतकल्लिम, मालूम हुआ यह कराहत मुतकल्लिम की सिफत है, और इसी कराहत से यह करीह तु के फेल का इश्तिकाक हुआ है। जब इसी से फेल का इश्तिकाक हुआ है तो फेल का जिस मस्तर से इश्तिकाक होता है फेल के अंदर भी वही मस्तर होता है, तो बाई एतबार इस फेल के अंदर भी वही मस्तर है, तो मालूम हुआ यह फेल इसके हम माना है, तो फहुआ मफूल उन मुतलक उन, तो यह मफूल मुतलक है। वह इजा जुकीरत बादहू बिल एतबार सानी, और जब करीहतू को जिक्र किया जाए उसके फेल के बाद दूसरे एतबार से, कमाफी कौली का, जैसे कि आपके इस कौल में है करीहतू कराहती, तो इसके अंदर जो कराहती है वह किस एतबार से जिक्र है कि इससे फेल का इश्तिकाक हुआ है या इस पर यह फेल वाके हुआ है, इस पर फेल वाके हुआ है, तो फहुआ मफूल उन बिही, तो फिर यह मफूल बिही है, ला मफूल उन मुतलक उन, मफूल मुतलक नहीं है, इस लैसा ज़ालिकल फ़िअल मुश्तमिलन अलैहि बिहादल एतबारी, इसलिए क्योंकि यह फेल इस पर मुश्तमिल नहीं है इस एतबार से, बल हुआ वाकिउन अलैहि, बल्कि वो फेल इस पर वाकिअ है, वुकूअल फ़िअल अलल मफ़ूल बिही, जिस तरह के फेल मफ़ूल बिही पर वाकिअ होता है, फ़ख़रज बिहाज़ल एतबारी अनिल हद्दी, तो ये करीह तो कराहती ये निकल गया बिहाज़ल एतबारी इस एतबार की वजह से, अनिल हद्दी, किससे, हद, हद कहते हैं जामे अम्माने अतारीफ को भाई, तो ये जो मफूल मुतलक की जामे अमाने तारीफ आई इससे ये कराहती निकल गया इस एतबार से, वन तबकल हद अलल महदूदी, और मुंतबिक हो गई हद अलल महदूदी, किस पर, महदूद पर, हद किसे कहते हैं तारीफ, और महदूद जिसकी तारीफ की गई, तो तारीफ किसकी की जा रही है मफूल मुतलक की, वो हुआ महदूद, और जो तारीफ की वो है हद, तो कहते हैं वन तबकल हद अलल महदूदी, और मुंतबिक हो गई हद महदूद पर, जामिया व मानिअन, जामिया मानिअ होकर, जामिया ये तारीफ जामे माने होकर मुंतबिक हो गई महदूद पर, यानी यूं कहो मुंतबिक हो गई यानी सादिक आई, ये हद सादिक आ गई महदूद पर, जामिया माने होकर, यानी ये हद जामिया है, इसमें तमाम मफूल मुतलक दाखिल हो गए, और नीज यह हद मान्या है, मफूल लहू भी निकल गया इससे, और करीह तु कराहती जैसे लफ्ज भी इससे निकल गए भाई। बात समझ में आ गई। अब याद रखो हासिल कलाम सुन लो भाई, कीमती बात, मालूम हुआ करीह तु कराहती ये कराहती मफूल मुतलक नहीं है ये, बल्कि ये मफूल भी ही है। हां करीह तु कराहतन ये कराहत क्या है, ये मफूल मुतलक है, देख रहे हैं आप, जैसे देखो साहिब जामी ने भी जिक्र किया कमाफी कौली का करीह तु कराहतन, यहां देखो कराहत को अकेला जिक्र किया है, या हटा दी उससे मुतकल्लिम की जो या थी, इस एतबार से मफूल मुतलक है, और करीह तु कराहती इसको जिक्र किया कि यह मफूल भी ही है। बात समझ में आ गई। तो याद रखना ये जो करीह तु कराहती है ये कराहती ये मफूल मुतलक नहीं है, ये मफूल बिही है, और इसको साहिब जामी ने तारीफ से निकाल दिया, इसको तारीफ से निकाल दिया। तो बाज़ शारहीन ने तो यही तकरीर की है जो मैंने जिक्र की कि ये कराहती मफूल बिही है, इसको तारीफ से निकलना भी चाहिए और निकाल भी दिया साहिब जामी ने, जबकि बाज़ शारहीन ने और तकरीर की भाई, और तकरीर की, उनकी तकरीर का हासिल यह है, वो कहते हैं कि ये कराहती के अंदर ही दो एतबार हैं, किसके अंदर, कराहती के अंदर ही दो एतबार हैं, इसी तरह या साथ जुड़ी हुई हो फिर भी दो एतबार हैं, अगर इस एतबार से आप इसको जिक्र करें कि इसी से फेल का इश्तिकाक है तो ये मफूल मुतलक, और इस एतबार से अगर आप इसको जिक्र करें कि फेल इस पर वाके है तो यह मफूल भी ही है। तो चुनांचे वो कहते हैं इसी कराहती के अंदर दो एतबार हैं, कितने एतबार, एक एतबार से यह मफूल मुतलक है और दूसरे एतबार से मफूल मुतलक नहीं है। चुनांचे आगे वो मजीद फरमाते हैं, कहते हैं ये जो आया ना वन तबकल हद अलल महदूदी जामिया व मानिअन, कि यह हद सादिक आ गई महदूद पर जामिया माने होकर, جامع، اس کو وہ اسی کراہتی سے جوڑتے ہیں کہ من وجہ کراہتی کو داخل ہونا چاہیے تاکہ تعریف جامع ہو جائے، اور من وجہ کراہتی کو خارج ہونا چاہیے تاکہ تعریف کیا ہو جائے، مانع ہو جائے. تو انہوں نے یہ جامع اور مانع کو اسی کراہتی سے جوڑ دیا ہے. تعریف جامع بھی کب ہوگی؟ جب کراہتی ایک اعتبار سے داخل ہو جائے کہ مفعول مطلق ہے. اور تعریف مانع کب ہوگی؟ جب دوسرے اعتبار سے کراہتی کیا ہو جائے، خارج ہو جائے. لیکن یاد رکھنا یہ تقریر درست نہیں ہے بھائی، یہ کراہتی کے اندر دو اعتبار نہیں ہے، کراہتی کے اندر ایک ہی اعتبار ہے، یہ مفعول بھی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مفعول بھی ہے اور اس کو خارج ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو اعتبار نہیں ہے. اور صاحب جامع بھی اس کو نکالنا ہی چاہتے ہیں. چنانچہ دیکھو جہاں بات شروع کی تھی وہاں کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ خَرَجَ بِهِ مِثْلُ كَرَاهَتِي، کہ کراہتی جیسی مثالیں اس سے نکل گئیں بھائی. یہ نہیں کہا کہ بعض اعتبار سے نکلی اور بعض سے نہیں نکلی، نہیں نہیں، کیا کہا، یہ تعریف سے نکل گئیں. اور جب کہا تھا دو اعتبار ہیں کراہت کے اندر، ایک اعتبار سے مفعول مطلق ہے، ایک اعتبار سے مفعول مطلق نہیں، تو جہاں کہا یہ ایک اعتبار سے مفعول مطلق ہے تو وہاں مثال الگ ذکر کی، کرہتو کراہتن بھائی، دیکھو یا کو ختم کر دیا، تو اس اعتبار سے مفعول مطلق ہے. اور جہاں کہا کہ دوسرے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہی ہے، مفعول مطلق نہیں ہے، تو اس کے لیے دوسری مثال ذکر کی، بل اعتبار ثانی کما فی قولی کا کرہتو کراہتی، دیکھا، اور اس کے آگے ذکر کیا، فہوا مفعول بھی لا مفعول مطلق، یہ مفعول بھی ہے، مفعول مطلق نہیں ہے، تصریح کر دی کہ یہ مفعول مطلق نہیں ہے، اسی کے اندر دو اعتبار نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کراہتی کو نکلنا چاہیے بھائی، لہذا اسی کے اندر دو اعتبار بنانا یہ درست نہیں ہے بھائی. چنانچہ خود آگے پھر بالکل آخر میں بھی فرمایا کہ فخرج بهذا الاعتبار، یہ جو کرہتو کراہتی ہے اس اعتبار سے نکل گیا، کیونکہ اس میں اعتبار ثانی ہے، اعتبار اول اس میں ہے ہی نہیں ہے بھائی. اور یہ جو کہا نا ون طبق الحد علی المحدود جامعا ومانعا، یہ اس ساری بحث کی طرف اشارہ ہے کہ ساری تعریف کیا ہو گئی، جامع مانع ہو گئی. یہ تعریف جامع بھی ہے، ماتا موتن جیسی مثالیں داخل نہیں ہو رہی تھیں، لیکن صاحب جامع نے بتایا یہ بھی داخل ہیں، اور نیز کرہتو کراہتی داخل ہو رہے تھے، صاحب جامع نے بتایا یہ داخل نہیں، یہ خارج ہیں، تو تعریف کیا ہو گئی، مانع ہوئی. تو یہ ساری بحث کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ یہ تعریف جامع مانع ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وقد یکون المفعول المطلق للتاکید ان لم یکن فی مفہومه زیادت علی ما یفہم من الفعل. اب مفعول مطلق کے فائدے ذکر کریں گے. مفعول مطلق کے فائدے پہ ادھر دیکھیے، پہلے اس کو سمجھ لیں. مفعول مطلق کے یاد رکھو تین بڑے فائدے ہیں بھائی. ایک تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ماقبل میں جو فعل ذکر ہو یہ اسی کو پکا کر دیتا ہے، اس کو پختہ کر دیتا ہے. ضربت ضربن، یہ جو ضربن مفعول مطلق آیا اس نے اسی ضربت کے معنی کو پکا کر دیا. پکا کرنے کا معنی کیا؟ کہ یہ غلطی اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. تو وجہ ہے مفعول مطلق کا پہلا فائدہ کیا؟ کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید کا کیا معنی؟ یعنی مجاز اور غلطی کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. مثلا میں نے آپ سے کہا ضربت زیدن، ضربت زیدن، تو بھائی جب میں نے ضربت زیدن کہا تو سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے، تو اس کی پٹائی کون کر سکتا ہے. تو یہ ضربت غلطی سے زبان پر آ گیا، اصل میں تو وہ اکرمت کہنا چاہتا تھا. میں نے تو ضربت زیدن کہا، لیکن سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ ضربت غلطی سے زبان پر آ گیا، اصل میں تو کیا کہنا چاہتے تھے، اکرمت زیدن کہنا چاہتے تھے، لیکن جب میں نے آگے ضربن مفعول مطلق ذکر کر دیا، ضربت زیدن ضربن، اس ضربن نے اس ضرب کے فعل کو پکا کر دیا کہ وہ فعل غلطی سے ادا نہیں ہوا، بلکہ ضرب بول کر ضرب ہی مراد ہے. اور نیز یہ مفعول مطلق مجاز کے احتمال کو بھی ختم کر دیتا ہے، مجاز کے احتمال کو بھی ختم کر دیتا ہے. مثلا میں نے کہا ضربت زیدن، تو سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی، لفظ تو پٹائی کا ذکر کیا لیکن پٹائی نہیں کی ہوگی، بس اس کو ڈانٹ دیا ہوگا، اور لیکن بہت زیادہ ڈانٹ دیا، تو اس ڈانٹ کو ہی پٹائی سے تعبیر کر دیا کہ یوں سمجھو میں نے پٹائی ہی کر دی اس کی بھئی. تو لہذا ضربت زیدن، یہ جو ضربت فعل ذکر ہوا، اس کو سننے والا مجاز پر محمول کر سکتا ہے کہ شاید یہ मजाजन यह कलाम किया गया है, हकीकत में जर्ब का फेल वाकई नहीं हुआ। क्योंकि आप जानते हैं बाज़ोकात एक लफ्ज का एक हकीकी माना होता है और एक मजाजी माना होता है। जैसे शेर, शेर का लफ्ज जंगली दरिंदे के लिए वजह है लेकिन यह बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो जंगली दरिंदा यह लफ्ज शेर का हकीकी माना और यह बहादुर आदमी इसका मजाजी माना। तो फेल के बाद जब मफूले मुतलक को जिक्र कर दिया जाए तो वह मजाज के इहतमाल को खत्म कर देता है। तो मफूले मुतलक का पहला फायदा क्या? ताकीद के कलाम में ताकीद पैदा करता है। क्या माना ताकीद पैदा करता है? यानी गलती और मजाज के इहतमाल को खत्म कर देता है। और दूसरा फायदा याद रखना कि जो मफूल मुतलक है कभी नौ बयान करने के लिए आता है, किसी चीज की कोई खास नौ, कोई खास किस्म बयान करने के लिए आता है। जैसे मैं कहता हूं जलस्तु जिलसतल कारी, जलस्तु मैं बैठा। अब मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि मैं किस नौ पर, किस तरीके पर बैठा, तो फिर आगे मैं मफूले मुतलक लाकर उसको बयान करूंगा। जलस्तु जिलसा तल कारी, जिस तरह कारी हजरात बैठते हैं मैं उस तरह बैठा। तो यह कभी नौ बयान करने के लिए आता है। और इसी तरह कभी मफूले मुतलक जो है वह आदद बयान करने के लिए आता है। जैसे मसलन मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं एक दफा बैठा, तो मैं कहूंगा जलस्तु जलसतन। और अगर मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं दो मरतबा बैठा तो फिर मैं कहूंगा जलस्तु जलसतैनी। और अगर मैं बतलाना चाहता हूं मैं कई मरतबा बैठा तो मैं कहूंगा जलस्तु जलसातिन, मैं कई मरतबा बैठा। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मफूल मुतलक का अलग तर्जमा नहीं करते। जरबतु जरबन, इसका क्या तर्जमा करेंगे? मैंने पिटाई की। तुलबा क्या तर्जमा करते हैं? जरब तो जरबन, मैंने मारा, मारना। देखा मफूले मुतलक यानी वो मस्तर का तर्जमा अलग जिक्र करते हैं। देखिए भाई किताब पर सबसे पहले मतन मतन देख लें। कहते हैं वकद यकून उलित ताकीदी, और मफूले मुतलक कभी कभार ताकीद के लिए आता है। वन नौई, और कभी कभार नौ यानी किस्म बतलाने के लिए आता है कि किस किस्म का फेल किया गया। वल आददी, और कभी मफूले मुतलक आदद बयान करने के लिए आता है। मिसलु जलस्तु जुलूसन, क्या तर्जमा होगा? मैं बैठा। जलस्तु जुलूसन, मैं बैठा। तो लबा उमूमन क्या तर्जमा करते हैं? मैं बैठा, बैठना। नहीं भाई, मफूले मुतलक का अलग तर्जमा नहीं करते। जलस्तु जुलूसन, मैं बैठा, ये ताकीद के लिए है भाई। ये किस लिए है? ताकीद के लिए है। याद रखना मफूले मुतलक ताकीद के लिए उस वक्त होगा जब इसके मफहूम में कोई ज्यादती ना हो। ये वही मफहूम अदा करे जो फेल से मफहूम हो रहा है। भाई फेल के अंदर भी मस्तर होता है या नहीं? फेल के अंदर भी मस्तर होता है। तो फेल के अंदर जो मस्तर था उससे जो माना मफहूम हो रहा था, मफूले मुतलक से भी वही माना मफहूम हो, उसमें किसी तरह की कोई ज्यादती ना हो, तो फिर समझो ये ताकीद के लिए है। जलस्तु, जलस्तु से क्या समझ में आया? कौन सा मस्तर? जुलूस। और आगे वही मस्तर जुलूसन भी मैं आगे ले आया, मालूम हुआ ये मस्तर ताकीद के लिए है। ताकीद किसे कहते हैं? एक चीज को दो दफा जिक्र किया जाए एक चीज को। तो जलस्तु से भी क्या समझ में आया? जुलूस। और आगे जुलूस दोबारा भी आ गया तो इसने वो पहले जुलूस को पक्का कर दिया। भाई बात समझ में आ रही है? तो यह याद रखना कि मफूले मुतलक ताकीद के लिए उस वक्त होगा जब इसके मफहूम में कोई ज्यादती ना हो। किससे ज्यादती ना हो? वो जो फेल से मफहूम हो रहा था, वो जो फेल से मस्तर मफहूम हो रहा था, उसके मफहूम पर कोई ज्यादती इसके अंदर नहीं है, तो फिर समझ जाओ ये ताकीद के लिए है। और अगर इसके माना के अंदर ज्यादती है फिर समझ जाओ ये नौ या आदत के लिए है। जैसे याद रखो ये फालतुन वजन आदत बयान करने के लिए आता है। फालतुन आदत बयान करने के लिए, जैसे जलसतुन, जलस्तु जलसतन, क्या माना? मैं एक दफा बैठा। और जलस्तु जलसतैनी, मैं दो मरतबा बैठा। और जलस्तु जलसातिन, मैं कई मरतबा बैठा। तो फालतुन वजन मस्तर में किस लिए आता है? आदद बयान करने के लिए। और याद रखो फिअलतुन वजन जो है वो नौ बयान करने के लिए आता है। जलस्तु जिलसतन, क्या माना? मैं एक तरीके पर बैठा, एक नौ पर बैठा। जलस्तु जिलसतैनी, क्या माना? मैं दो तरीकों पर बैठा। जलस्तु जिलसातिन, क्या माना? मैं कई तरीकों पर बैठा। काफी देर बैठना पड़ा तो कभी थक कर एक तरीके पर बैठ जाता, कभी थक कर दूसरे तरीके पर बैठ जाता। बात समझ में आ रही है? तो फालतुन वजन मस्तर में किस लिए आता है? आदत बयान करने के लिए। और फियालतुन वजन किस लिए आता है? نوع بیان کرنے کے لیے. تو مفعول مطلق تاکید کے لیے کب ہوگا؟ جب اس کا بھی وہی مفہوم ہو جو مصدر فعل سے مفہوم ہو رہا تھا. اگر اس کے مفہوم میں ذرا بھی زیادتی آ گئی تو سمجھ جاؤ یہ تاکید کے لیے نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جلستو جلوسن, جلستو سے بھی کون سا مصدر سمجھ میں آیا؟ جلوس. اور آگے بھی جلوسن ذکر ہے, اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہے. تو لہذا یہ مفعول مطلق کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے ہے. اور اگر میں یوں کہوں جلستو جلستن, توجہ ہے, جلستو جلستن, یہ جلستن کس لیے آیا؟ عدد بیان کرنے کے لیے. کس طرح؟ آپ اس کو تاکید کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کیونکہ اس کے معنی میں زیادتی ہے. وہ جو جلستو ہے اس سے صرف بیٹھنا سمجھ میں آ رہا ہے, اور جلستن کا کیا معنی؟ جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا, یہ عدد کے لیے ہے. تو فعل سے صرف کیا سمجھ میں آیا؟ بیٹھنا. اور جلستن سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایک دفعہ بیٹھنا. تو مفہوم میں زیادتی آ گئی. جب مفہوم میں زیادتی آ گئی معلوم ہوا فعل سے جو مصدر مفہوم ہوا وہ اور ہے, جو یہاں آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ جب یہ اور ہے, دونوں میں فرق ہے, تو یہ تاکید کے لیے نہیں ہو سکتا. تاکید کے لیے وہی چیز, تاکید کسے کہتے ہیں؟ کہ اسی چیز کو دوبارہ لایا جائے. جب اسی چیز کو دوبارہ لایا جائے, بھائی جانی زیدن زیدن, یہ زید ثانی کیا کر رہا ہے؟ زید اول کی تاکید ہے. میں نے کسی سے کہا جانی زیدن, اب اس کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی زید کہاں آیا ہوگا, زید تو بڑا آدمی ہے, تو میں دوبارہ اس کی تاکید لایا, جا زیدن زیدن, اس نے اس پہلے زید کو پکا کر دیا, معلوم ہوا کہ زید ہی آیا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تاکید کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے, تو یہ اس چیز کو پکا کر دیتی ہے. تو اگر فعل سے ایک مصدر مفہوم ہو رہا ہے اور آگے مفعول مطلق کے مفہوم اور ہے, تو معلوم ہوا یہ تو وہی چیز نہیں. جب وہی چیز نہیں معلوم ہوا یہ تاکید نہیں پیدا کر رہا, بلکہ یہ نوع یا عدد کا فائدہ دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح جلستو جلستن, یہ جلستن کس لیے آیا؟ یہ نوع کے لیے ہے, یہ تاکید کے لیے نہیں. کیونکہ جلسہ کا کیا معنی؟ ایک نوع پر بیٹھنا, ایک طریقے پر بیٹھنا. تو فعل سے تو صرف جلوس بیٹھنا سمجھ میں آ رہا تھا, ایک خاص طریقے پر بیٹھنا یہ تو اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو اس کے مفہوم میں زیادتی ہے بھائی. یا دوسری مثال لے لو ضربت ضربن, یہ ضربن کس لیے ہے؟ یہ ضربت ضربن تاکید کے لیے ہے, نوع کے لیے ہے یا عدد کے لیے ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہے. ضربا سے بھی ضرب سمجھ میں آیا اور آگے ضربن میں لے آیا. دوسری مثال لے لو ضربت ضربن شدیدن, یہ کس لیے ہے؟ یہ نہیں تاکید کے لیے بھائی, اس کی صفت آ گئی. ضربن شدیدن کیا معنی؟ سخت پٹائی, سخت پٹائی. اور فعل سے سخت پٹائی سمجھ میں آئی تھی یا مطلق پٹائی سمجھ میں آئی تھی؟ مطلق. تو یہاں پر یہ نوع بیان کر رہا ہے, کیونکہ پٹائی کوئی ہلکی ہوتی ہے کوئی سخت ہوتی ہے, تو اس نے نوع بیان کر دی. توجہ ہے؟ تو نوع کے لیے کبھی, نوع کے لیے کبھی وہ خاص وزن فعلتن استعمال کرتے ہیں, اور کبھی صفت لائی جاتی ہے بھائی, کبھی صفت لائی جاتی ہے, کبھی اضافت وغیرہ کی جاتی ہے. جلستو جلوس القاری, کیا معنی؟ پھر سنو جلستو جلوسن, یہ جلوسن کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے, کیونکہ جلستو سے بھی وہی جلوس سمجھ میں آیا, آگے بھی وہی جلوس ہے. اب ذرا اس کی اضافت کر دو, جلستو جلوس القاری, قاری کی طرح بیٹھنا, یہ تو فعل سے مفہوم نہیں ہو رہا. معلوم ہوا یہ آگے اب جو جلوس القاری آیا یہ کس لیے ہے؟ یہ نوع کے لیے ہے. اور مثال لے لو جلستو جلوسینی, جلستو جلوسینی, یہ جلوسین کس لیے آیا؟ یہ عدد بیان کرنے کے لیے آیا, کیونکہ جلوسین کا کیا معنی ہے؟ دو دفعہ بیٹھنا, تسنیہ ہے بھائی. اور فعل سے کوئی دو دفعہ بیٹھنا سمجھ میں آیا تھا؟ نہیں, طریقہ سمجھ میں آ گیا. تو لہذا یہ جو مفعول مطلق ہے کبھی تاکید کے لیے آئے گا, کبھی نوع کے لیے, اور کبھی عدد کے لیے. تاکید کے لیے جو آئے اس کا مفہوم وہی ہونا چاہیے جو فعل سے مفہوم ہوا تھا. اگر اس کے مفہوم میں کسی بھی لحاظ سے کمی یا زیادتی ہے تو سمجھ جاؤ یہ تاکید کے لیے نہیں ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما, کلم اللہ موسیٰ, اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. تو یہاں مجاز کا احتمال ہو سکتا تھا کہ اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا ہوگا, کسی فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہوگا. اور فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجوانا بھی تو اسی طرح ہے جیسے اللہ خود ہی کلام فرما رہے ہیں. लेकिन आगे तकलीमन मस्तर आ गया, और कल्लामा से भी कौन सा मस्तर मालूम हुआ था, तकलीम, और आगे भी तकलीम आ गया तो इसने उसको पक्का कर दिया और मजाज के इहतेमाल को खत्म कर दिया। मालूम हुआ अल्लाह ने फरिश्ते वगैरह के जरिए कलाम नहीं फरमाया बल्कि बराह रास्त कलाम फरमाया है, यहां मजाज का इहतेमाल खत्म हो गया। बात समझ में आ गई। तो जरब तो जरबन शदीदन, यह जरबन शदीदन किस लिए आया, नौ के लिए। एक और मिसाल ले लें, जरब तो जरबन कसीरन, यह जरबन कसीरन किस लिए आया जी, नहीं ये अदद बयान करने के लिए है यहां पर भाई। जरबे कसीर और कलील ये तो अदद के एतबार से होता है, जरब थोड़ी है या जरब ज्यादा है भाई। बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ अदद को बयान करने के लिए कभी वो खास वजन इस्तेमाल करते हैं, जलस्तु जलसतन या जलस्तु जलसतैनी या जलस्तु जलसातिन, कभी सिफत लाते हैं जैसे जरब तो जरबन कसीरन, और कभी याद रखो मर्रतन का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, जलस्तु मर्रतन मैं एक दफा बैठा, जलस्तु मर्रतैनी मैं दो दफा बैठा, जलस्तु मिरारन मैं कई मर्तबा बैठा। और ये मर्रतन और मर्रतैन वगैरह ये सारे जर्फ हैं, ये क्या हैं, ये जर्फ जमान हैं, ये मफूल फी बनेंगे। बात समझ में आ गई जी। तो आदत बयान करने के लिए कभी फालतुन वजन इस्तेमाल करते हैं, कभी मस्तर की सिफत भी ले आते हैं, और कभी मर्रतन वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और नौ बयान करने के लिए क्या करते हैं, कभी फ़ालतुन वजन के इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी उस मस्तर की सिफत ले आते हैं, ज़रबतु ज़रबन शदीदन भाई, नौ बयान करने के लिए। और ताकीद के लिए मस्तर कब होगा, जब इस मस्तर का मफहूम वही हो जो फेल से मफहूम हो रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी या ज्यादती ना हो भाई। बात समझ में आ गई। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए भाई, कहते हैं वकद यकूनुल मफूलुल मुतलकुल ताकीदी, और कभी कभार मफूल मुतलक ताकीद के लिए होता है, इल्लम यकुन फी मफहूम ही ज्यादतुन, अगर इसके मफहूम में ज्यादती ना हो, अला मा युफहमु मिन अल-फ़िअल, उस मफहूम पर वो जो मफहूम हो रहा है फेल से, जब इसके मफहूम में ज्यादती ना हो, वो जो फेल से मफहूम हो रहा है उस पर इसके मफहूम में ज्यादती ना हो भाई। माना समझ में आ गया। तो कहते हैं इल्लम यकुन फी मफहूम ही ज्यादतुन अला मा युफहमु मिन अल-फ़िअल, अगर इसके मफहूम में ज्यादती ना हो उस पर वो जो फेल से मफहूम हो रहा है, वन नौ, और कभी कभार मफूल मुतलक जो है नौ के लिए आता है, इन दल्ला अला बाजी अनवाई ही, अगर ये मफूल मुतलक फेल की बाज अनवा पर दलालत करे, वल अददी, और कभी ये अदद के लिए आता है, इन दल्ला अला अददी ही, अगर ये उस फेल के अदद पर दलालत करे, मिसलु जलस्तु जुलूसन लित ताकीदी, ये ताकीद के लिए है, व जिल सतन बिकसरिल जीमी लिन नौ, ये नौ के लिए है, व जल सतन बिफतही हा, ये जीम के फतहा के साथ है, लिल अददी ये अदद के लिए है, फल अव्वलु अय्यल्लज़ी लित्ताकीदी ला युसन्ना वला युजमाउ, बस पहला यानी वो जो ताकीद के लिए है, ला युसन्ना वला युजमाउ, न उसकी तस्निया लाई जाती है और न जमा, भाई वो मस्तर जो ताकीद के लिए लाया जाए उसकी न तस्निया लाई जाती है और ना जमा, भाई क्यों तस्निया और जमा उसके क्यों नहीं लाते, कहते हैं भाई उसने सिर्फ माकबल फेल में ताकीद पैदा करनी है, ताकीद पैदा करनी है, तो ताकीद के लिए मुफरद काफी है, तस्निया जमा लाने की जरूरत नहीं। जरब तो जरबन, इस जरबन ने क्या किया, जरब तो के अंदर ताकीद पैदा कर दी, तो तस्निया जमा लाने की जब हाजत ही नहीं है तो लिहाजा ताकीद के लिए जमा या तस्निया लाना भी जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। तो वो मफ़ऊल मुतलक जो ताकीद के लिए आए, ला युसन्ना वला युजमाऊ, उसकी न तस्निया लाई जाती है और न जमा बई, लिअन्नहु दालुन अलल माहियतिल मुअर्रात अनिद दलालति अलत तअद्दुदी, इसलिए क्योंकि ये जो है जो वो मफ़ऊल मुतलक जो ताकीद के लिए आता है वो दलालत करता है, अलल माहियति उस माहियत पर, अल मुअर्रात यानी दलालती अलत तअद्दुदी, मुअर्रात का माना है खाली होना, मुअर्रात का क्या माना, जो चीज खाली हो उसको मुअर्रात, खाली हो या नंगी हो उसको मुअर्रात कहते हैं, तो यहां खाली होने के माना में है भाई। याद रखो ये जो मस्तर है ना, मस्तर ये आपको मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, ये इसमें जिंस है भाई, ये इसमें जिंस है और जिंस का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। तो फेल जब आपने कहा जरबतु, तो जरबतु से आपको जर्ब समझ में आई, और मुझे बताइए ये जो जर्ब जिंस और माहियत आपको समझ में आई इसके अंदर कोई तअद्दुद है? जरबतु मैंने पिटाई की, कोई आपको पता चला दो दफा या चार दफा या छह दफा या एक दफा? नहीं, ये मुतलक है, इसमें अदद की कोई कैद नहीं। तो फेल से वो जो मसदर मफहूम होता है, या यूं कहो फेल से वो जो माहियत और जिंस मफहूम होती है वो अदद पर दलालत नहीं करता। जब वो अदद पर दलालत नहीं कर रहा तो उसके लिए जो ताकीद आप ला रहे हैं उसके अंदर भी अदद पर दलालत नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आप उसको तस्निया या जमा ले आते हैं और आप बनाना चाहते हैं उसको ताकीद के लिए, तो भाई इसके तो मफहूम में ज्यादती आ गई। ये तो वो जिंस आपने जिक्र कर दी, मसलन जरबतु जरबैनी, ये तो आपने जरबैनी वो माहियत और जिंस जिक्र कर दी जिसके अंदर तअद्दुद है, और जो फेल से जो माहियत मफहूम हुई थी वो तो उसमें तो तअद्दुद नहीं था, तो फिर तो दोनों एक चीजें नहीं है, लिहाजा ये ताकीद के लिए नहीं हो सकता जो तस्निया या जमा हो। भाई ताकीद के लिए क्या जरूरी कि वो माहियत जो फेल से मफहूम हुई है, और फेल से कौन सी माहियत मफहूम हुई थी? जो तअद्दुद से खाली थी। तो ताकीद के लिए भी जो मस्तर लाएं उसको भी तअद्दुद से खाली होना चाहिए, लिहाजा उसको तस्निया और जमा नहीं ला सकते। हासिल कलाम क्या कि फेल से जो माहियत समझ में आ रही है आगे वही माहियत आप दोबारा जिक्र करेंगे तो ताकीद बनेगी, वरना वो ताकीद के लिए नहीं हो सकता। तो कहते हैं लिअन्नहु दालुन अलल माहियतिल मुअर्रात यानी दलालती अलत तअद्दुद, इसलिए क्योंकि ये जो मफूल मुतलक जो ताकीद के लिए आता है ये दलालत करता है उस माहियत पर जो खाली होती है। भाई किस चीज से खाली होती है? यानी दलालती अलत तअद्दुद, तअद्दुद पर दलालत से, यानी ये तअद्दुद पर दलालत नहीं करता जो ताकीद के लिए आता है। वह तस्नियतु वल जमु यस्तलजिमान तअद्दुदा, जबकि तस्निया और जमा तो मुस्तलजिम है तअद्दुद को, भाई इनके साथ तो तअद्दुद लाजिम है। तस्निया तो किसको कहते हैं? जिसमें दो अफराद हो, और जमा किसको कहते हैं? जिसमें दो से ज्यादा हो, तो इनमें तअद्दुद है भाई। फला यु कालु, पस ये नहीं कहा जाएगा जलस्तु जुलूसैनी औ जुलूसातिन इल्ला इदा कुसिदा बिही नौ अविल अददु। तो कहते हैं जलस्तु जुलूसैनी औ जुलूसातिन नहीं कहेंगे मगर उस वक्त जब इरादा किया जाए इसके जरिए नौ या अदद का, फिर तस्निया या जमा लाएंगे। वैसे तस्निया और जमा ताकीद के लिए नहीं लाएंगे भाई। बिखिलाफी अखवाई ही, बखिलाफ इसके दो भाइयों के, यानी के नौ और अदद। नौ और अदद ये तीन चीजें जिक्र हुई ना, ताकीद नौ और अदद। ताकीद के अंदर उस मफूल मुतलक को तस्निया और जमा नहीं ला सकते, लेकिन नौ और अदद उसके अंदर तस्निया और जमा ला सकते हैं। यह माना है बिखिलाफी अखवाई ही, बखिलाफ इसके दो भाइयों के, यानी नौ और आगे पढ़ें भाई किस तरह पढ़ेंगे? ये अल्लाजीना नहीं है भाई, मैंने आपको बतलाया था एक है अल्लाजीना और एक है अल्लाजैनी। अल्लाजीना जमा के लिए आता है, अल्लाजीना इसमें मौसूल है जमा के लिए आता है, और एक तस्निया के लिए आता है अल्लाजैनी। और दोनों में फिर फर्क भी मैंने बतलाया था, अल्लाजीना के अंदर एक लाम है क्योंकि ये कसीरुल इस्तेमाल है और कसरत खिफत को चाहती है, तो इसमें एक ही लाम रखा। और अल्लाजैनी ये तस्निया के लिए आता है और तस्निया के लिए तो इसमें मौसूल का इस्तेमाल कम होता है, तो इसलिए उसमें फिर दो लाम लिखते हैं। तो यहां देखो अल्लाजैनी दो लाम है, इससे पता चल जाता है कि ये तस्निया है। तो कहते हैं बिखिलाफी अखवाई ही लज़ैनी हुमा लिन्नौई वल अददी, बखिलाफ इसके दो भाइयों के जो के नौ और अदद हैं। नहवु जलस्तु जलसतैनी व जलसातिन बिकसरिल जीमी औ फतहिहा, यानी ये जो दो मिसालें हैं इनको जीम के कसरा और फतहा दोनों के साथ पढ़ सकते हैं। जलस्तु जलसतैनी क्या माना? मैं दो मरतबा बैठा, और जलस्तु जलसातिन मैं कई मरतबा बैठा। अब इसको जीम के कसरा के साथ पढ़ें, जलस्तु जिलसतैनी क्या माना? मैं दो किस्म पर बैठा, और जलस्तु जिलसातिन में कई किस्म पर कई तरीकों पर बैठा। तो कहते हैं नहवु जलस्तु जलसतैनी व जलसातिन बिकसरिल जीमी औ फतहिहा, ये जीम के कसरा या फतहा के साथ है, यानी दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। वकद यकूनुल मफूलुल मुतलकु बिगैरी लफ्जिही, और कभी कभार मफूल मुतलक जो है बिगैरी लफ्जिही ऐ बिगैरी लफ्जिल फ़िअली, ये हाजमीर किसको राजे? फेल को। याद रखना ये जो मफूल मुतलक है कभी कभार अपने फेल के लफ्ज से मुगायर होता है, कभी लफ्जों में मुगायरत होती है और कभी बाब के अंदर सिर्फ मुगायरत होती है। लफ्जों में मुगायरत यानी दोनों के लफ्ज ही अलग हैं, मादा ही अलग है। जैसे जैसे कअअतु जुलूसन, कुउद का माना भी बैठना और जुलूस का माना भी बैठना है। तो देखो कादा का मादा और जलासा का मादा और है, लेकिन चूंकि माना एक है, माना एक होना जरूरी है, क्योंकि पीछे तारीफ के अंदर क्या जिक्र किया था, फेल मजकूरिम बेमाना हो, माना की कैद आई थी कि वो फेल उसका हम माना होना चाहिए भाई। तो देखो इसके अंदर दोनों का मादा ही अलग है, और कभी कभार मादा तो एक होता है लेकिन बाब अलग अलग होते हैं। जैसे अंबतल्लाहु नबाता, अंबता ये बाब इफाल है, और नबातन जो आगे मफूल मुतलक आया वो सुलासी मुजर्रद से आया, तो फेल आया सुलासी मजीद फी से और मफूल मुतलक आया सुलासी मुजर्रद से। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम ये कि मफूल मुतलक जो है वो कभी अपने फेल के मुगायर होता है, कभी मादे में मुगायर होता है और कभी बाब के अंदर मुगायर होता है। तो कहते हैं वकद यकूनुल मफूलुल मुतलकु बिगैरी लफ्जिही, और कभी कभार मफूल मुतलक जो है अपने फेल के लफ्ज के अलावा होता है, अय मुगायरन लिलफ्जी फेलिही, यानी अपने फेल के लफ्ज के मुगायर होता है, इम्मा बिहसबिल मादति, या तो मादा के एतबार से, मिसलु काअतु जुलूसन जैसे काअतु जुलूसन, व इम्मा बिहसबिल बाबी, और या फिर बाब के एतबार से यानी अलग होता है, नहु अंबतहुल्लाहु नबाता, अल्लाह ने वो सब्जा उगाया, अंबतहुल्लाहु अल्लाह ने वो उगाया यानी वो सब्जा उगाया, और नबातन इसके आगे मफूल मुतलक है और दोनों का बाब अलग अलग है। साहिब काफिया ने यहां काद तो जुलूसन मिसाल जिक्र की और दोनों का माना एक ही है। बाज उलमा ने फर्क किया है, वो कहते हैं कि कियाम के बाद जब कोई शख्स बैठे, खड़ा हुआ था और बैठ जाए तो उसके लिए कुऊद का लफ्ज बोलते हैं, और लेटा हुआ हो और उसके बाद बैठ जाए तो उसके लिए जुलूस का लफ्ज बोलते हैं। तो कुऊद किसके बाद है, कियाम के बाद, या अमूमन भूल जाता है इंसान के कियाम के बाद कौन सा है बैठना और लेटने के बाद बैठना कौन सा है। तो एक निशानी याद रखना, कुऊद के शुरू में भी काफ है और कियाम के शुरू में भी काफ है, तो कुऊद जो है वह है जो कियाम के बाद हो, और जुलूस वो है जो लेटने के बाद हो या सोने के बाद हो। तो बाज़ उलमा ने यह फर्क किया है, अगर यह फर्क तस्लीम कर लिया जाए फिर तो यह मिसाल दुरुस्त नहीं रहती, फिर यह मिसाल, लेकिन आम उलमा ने यह फर्क नहीं किया, यानी मुतलक बैठने के लिए कुऊद भी बोलते हैं और जुलूस भी, और उसी पर यह मिसाल भी मबनी है भाई। वसीबवे ही युकद्दिरु लहू आमिलम मिन बाबिही, और इमाम सीबवे इसके लिए मुकद्दर निकालते हैं आमिल को मिन बाबिही, इसी के बाब से, और इमाम सीबवे इनके लिए इसी के बाब से आमिल मुकद्दर निकालते हैं। इमाम सीबवे फरमाते हैं कि नहीं, मफूल मुतलक फेल के लफ्जों से मुगायर नहीं हो सकता, मादा में भी मुगायर नहीं हो सकता और बाब के अंदर भी मुगायर नहीं हो सकता। चुनांचे वो फरमाते हैं काअतु जुलूसन, ये जुलूसन काअतु से मफूल मुतलक नहीं है, बल्कि इसके लिए जलस्तु का फेल अलग निकालो, आई जलस्तु जुलूसन। और इसी तरह अंबतहुल्लाहु नबातन, इसके अंदर वो फरमाते हैं कि नबातन जो है इसके लिए फेल अलग निकालना पड़ेगा, आई नबाता नबातन। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वसीबवैही युकद्दिरु लहू आमिलम मिन बाबिही, और इमाम सीबवै इस मफूल मुतलक के लिए आमिल को मुकद्दर निकालते हैं मिन बाबिही, उसी के बाब से, आई काअतु व जलस्तु जुलूसन। देखा, जलस्तु अलग निकाल लेंगे इस जुलूसन के लिए। और एक और कीमती बात आपको बतलाऊं भाई, काअतु व जलस्तु जुलूसन, देखिए काअतु ऊपर मतन में आओ, काअतु जुलूसन, तो जुलूसन के लिए जलस्तु अलग निकालेंगे तो कैसे कहना चाहिए था, काअतु जलस्तु जुलूसन। लेकिन लेकिन साहिब जामी क्या फरमा रहे हैं, अ काअतु व जलस्तु जुलूसन, दरमियान में वाव भी ले आए। ये वाव क्यों लाए, वजह यह कि याद रखना फेल पर फेल कभी दाखिल नहीं होता, एक फेल के फौरन बाद दूसरा फेल आ जाए, दरमियान में कोई लफ्ज वगैरह ना हो तो यह जायज नहीं, कलाम अरब में इसकी मिसाल नहीं है। तो लिहाजा काद तो जलस तो जुलूसन कहते तो फिर तो यह दुरुस्त नहीं था अरबी जुबान के एतबार से, इसलिए दरमियान में वाव ले आए भाई। बात समझ में आ गई, काद तो व जलस तो जुलूसन, وَأَنْبَتَهُ اللَّهُ فَنَبَتَ نَبَاتًا. دیکھو یہاں فا لے آئے بھائی, تو وَأَنْبَتَهُ اللَّهُ, اور اللہ نے وہ سبزہ اگایا, فَنَبَتَ نَبَاتًا, تو وہ اگ آیا بھائی, اللہ نے وہ سبزہ اگایا تو وہ سبزہ اگ آیا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا, حل ہو گیا سارا؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.